जय राधा माधव जय राधा जय राधे जय राधे बोलो हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन जी महाराज की जय। श्री श्री गौर निताई पंच तत्व की जय। प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय। सर्व स्वामी गण की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय। श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप अध्याय दो श्लोक संख्या 15। कृपा करके सभी पीछे दोहराएंगे। यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। ऐसा लगता है कि आप लोग सुबह से कुछ भी नहीं खाए हैं, केवल यही प्रसाद का मन बना के आए, यही पाएंगे, बस यहाँ भी मिलेगा आपको। लेकिन मेरे को आशा है कि आप सब लोग पहले भी खा के आए हैं कुछ ना कुछ। थोड़ा सा जोर से बोल दो, खर्चा हो जाएगा आपका ताकत का, लेकिन मिल जाएगी वापस। यम ही न विथयन्ति एते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अनुवाद भी पीछे शब्द दोहराएंगे। हो सकता है संस्कृत के शब्द आपको समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए आप जोर से नहीं बोल रहे थे। कम से कम अनुवाद थोड़ा जोर से बोलो। हे पुरुष श्रेष्ठ,
हे पुरुष श्रेष्ठ
अर्जुन,
अर्जुन
जो पुरुष सुख तथा दुख में
विचलित नहीं होता
और
इन दोनों में
संभाव रखता है, वह
निश्चित रूप से
मुक्ति के योग्य है। धन्यवाद आपका दोहराने के लिए। आप कृपा करके ध्यान से सुन भी लेना और मैं पूछूंगा पढ़ने के बाद।
क्या सूत्र है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम ग्रहण अवश्य करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं। किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार की पथ का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था, यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय। आशा करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। मंगलाचरण के बाद मैं पूछूंगा, तब तक आप विचार कर लेते। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदम्। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं सागर जातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगन ललिता श्री विशाखां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपी कांत सप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो कृष्णमेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। हरे कृष्णा। हार्दिक अभिनंदन। हम कुछ रैंडम सिलेक्शन करेंगे आप लोगों में से जिनसे पूछा जाएगा, तो प्रकाश जी के पास में बैठे हुए आप बताएं। यश प्रभु, शरद प्रभु के पुत्र हैं। अच्छा अच्छा, यस यश प्रभु बताइए क्या समझ में आया।
रहता है वो
जय। सिट डाउन प्लीज। वंडरफुल आंसर। आप बताएंगे कुछ आपके पीछे जो बैठे? यस, बैठ के बताइए कोई बात नहीं। जय हरि बोल। आप बताएंगे कुछ प्लीज? आप चश्मा पहन। शुभ नाम आपका? नारायण जी, बहुत सुंदर नाम है आपका। प्लीज नारायण जी कुछ बताएं। जय हरि बोल। और कुछ उदाहरण वगैरह कोई कुछ बता सकता है जो पढ़ा था हमने? यस, माताओं में अभी पूछेंगे हम। कोई अपनी ओर से बताना चाहेंगे? हाथ खड़ा करें। खुद से कुछ बताना चाहेंगे? खुद से बताने को लेकर के काफी डर है। हाँ, हमें ही पूछना पड़ेगा। आप बताओ। आप नहीं, आपके पीछे वो बच्चे आपसे आगे। हाँ बताओ। और कुछ? वेरी नाइस।
एक इंसान को दुख में ज्यादा दुख नहीं करना चाहिए,
होना चाहिए। वही मुक्ति के। और कुछ ऐसा पॉइंट कोई इनके अतिरिक्त, इस विषय के अतिरिक्त? चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दिया था, अच्छी बात है। आप सब लोग बहुत कुछ जानते हैं, पुराने भक्त लोग और भी ज्यादा जानते हैं। धन्यवाद आपका सुंदर प्रयास करने के लिए। वैसे यश जी ने काफी विस्तार से बताने की चेष्टा की, यश जी का भी धन्यवाद। अभी जो कुछ भी कहें उसे कृपा करके ध्यान से सुन। जैसे मैंने आपको प्रश्न किए, आपका भी धर्म बनता है कि आप मेरे को भी कठिनाइयों में डालें प्रश्न करके, लेकिन क्लास के बाद। क्लास के बाद आप लोग भी प्रश्न कर सकते हैं, आपके पास भी बॉल आएगी, आप भी गोल कर सकते हैं। इसके पीछे मेरे को लाभ ये मिलेगा कि मेरे लिए भी तालियां बज सकती हैं। जैसे आपके लिए तालियां मैंने बजवाया, मेरे लिए भी तो बज सकती है, मेरे को भी खुशी मिलेगी। क्यों यश हो? इसलिए यश से आशा है कि वो प्रश्न करेंगे क्लास के बाद। ठीक है, थैंक यू। क्लास के बाद, पहले नहीं। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ भी कहें थोड़ी देर, आप सबसे निवेदन है इन बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो, ये जो सुख और दुख हैं, ये संसार में एक एक करके आते हैं और चले जाते हैं। कोई दुनिया का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में कभी सुख नहीं आया, और ना ही कोई ये कह सकता है कि मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आया हो। वो पागल ही होगा जो ऐसा स्टेटमेंट जारी करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुख और दुख ये बाध्य हैं जीव के जीवन में आने के लिए। गीता में भगवान ने एक सिद्धांत दिया कि संसार में मूलतः सुख तो है ही नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा ये संसार माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुख आलय है। ये संसार क्या है? दुख आलय है। दुख आलय में जैसे विद्यालय में क्या मिलती है? विद्या। औषधि आलय में क्या मिलती है? औषधि। कभी कभी टमाटर भी मिल जाते हैं औषधालय में, मिल जाते कि नहीं? मेरे पूछने पर नहीं बोला आपने, पहले ही नहीं बोल देते? पहले आपको लग रहा हो तो शायद मिल जाते होंगे, हमें ही नहीं मिले। नहीं, औषधालय में केवल औषधि ही मिलती है। तो ऐसे ही दुखालय में क्या मिलना चाहिए? दुख और कभी सुख, जैसे औषधि और कभी टमाटर नहीं हो सकता ना, केवल औषधि मिलती है। ऐसे ही दुखालय में केवल दुख और केवल दुखी मिलेगा, दुख और कभी सुख नहीं मिल सकता। और यहां गीता में इस श्लोक में कहा जा रहा है कि जीव को सुख भी मिलता है, तो भगवान ही अपने वचनों से मुकर रहे हैं। एक और भगवान ने संसार की बिल्डिंग के ऊपर लेबल लगा दिया, दुखालय। ये संसार क्या है? तो यहां क्या मिलना चाहिए कि केवल दुख, केवल दुख। और इस श्लोक में कह रहे हैं कि आदमी को सुख और दुख में समान रहना चाहिए, मतलब सुख भी मिल रहा है ना। और पहले दुखालय नाम दे दिया, अदरवाइज लिखना चाहिए था दुखालय 50% / सुखालय, ऐसा कुछ नाम लिखना चाहिए था ना। लेकिन वह नाम क्या लिखा? दुखालय, जहां केवल दुख मिलता है। तो यहां सुख क्यों मिल रहा है? बोले भगवान ने ये जो दो स्टेटमेंट दिए, ये तो एक दूसरे को काट रहे हैं। नहीं, वो अभी हमारे स्तर पर नीचे उतर के आके हमें समझा रहे। वैसे कई बार बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर्स ऊपर से नीचे उतर के आती है, टॉफी का लेन देन करती है, कभी खेलती भी है, कभी हंसी मजाक भी करते हैं, जबकि वो तो टीचिंग का पार्ट है ही नहीं, वो तो सिलेबस में कहीं है ही नहीं। लेकिन सिलेबस से नीचे आकर के उसके साथ, उसके विचारों के साथ थोड़ा तालमेल करते हुए उसको समझाने का प्रयास किया जाता है। तो संसार में हम सभी इस सिद्धांत को आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि यहाँ केवल दुखी मिलते हैं, यहाँ ऐसा लगता है कि सुख भी मिलते हैं। वास्तव में बड़े दुख से छोटा दुख आता है तो वो सुख जैसा प्रतीत होता है। बड़े दुख से छोटा दुख आता है तो वो सुख जैसा प्रतीत होता है। दूसरे शब्दों में, हमसे कोई ज्यादा दुखी हमें नजर आता है तो अपना दुख सुख में बदल जाता है, कम नहीं, सुख में बदल जाता है। अचानक से रिजल्ट आया, तेरे कितने पेपर बैक हैं? बोले 5, और हमारे 2, तो अंदर बड़ी खुशी मिले। रिजल्ट आया, बोले पता चला तू फेल हो गया, और फिर फोन लगाएंगे दोस्त को, तेरा क्या हुआ? बोले मैं भी, तो आंसू वापस लौट जाएंगे आंखों, रोने जा रहे थे। तो हम कई बार सुख की परिभाषा को इस प्रकार से देखते हैं, दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, होता है ना ऐसा? तो संसार में सुख है नहीं, लेकिन सुख का भ्रम है, फिर भी मान के चलते हैं ठीक है सुख है, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं। लेकिन साथ में ये भी मानना पड़ेगा कि दुख भी है। उदाहरण के लिए, सर्दी प्रायः जब बहुत कड़कड़ाके की पड़ती है तो दुखदायक होती है या सुखदायक लगती है? दुखदायक। और गर्मी जब कड़कड़ाके की पड़ती है तब कैसी लगती है? वो भी दुखदायक। तो दोनों ही चीजें कैसी हैं? दुखदायक। लेकिन जब गर्मी आ जाती है तो हम क्या चाहते हैं? सर्दी चाहते हैं, कब सर्दी आएंगी? अब गर्मी से जब गुजर रहे होते हैं तो दुखदायक सर्दी ही कैसी नजर आ रही है? सुखदायक। वो ठीक था यार, और जब सर्दियों से गुजर रहे होते हैं वो भी दुखदायक होता है, तब किसकी आशा करते हैं? गर्मी कब आएगी? है दोनों ही दुखदायक, लेकिन जब उनमें से एक से गुजर रहे होते हैं तो दूसरी कैसी लगती है? सुखदायक। और फिर ये चलता रहता है, सर्दी गर्मी बदलती रहती है कि नहीं, निरंतर परिवर्तनशील है। ऐसे ही हमारे जीवन में सुख आता है थोड़ी देर में वो दुख में बदल जाता है, सर्दी आती है थोड़ी देर में वो कड़कड़ाके की हो जाती है तो दुख में बदल जाता है। ऐसे संसार में प्रत्येक वस्तु के साथ ऐसा ही होता है। कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो अच्छा लगता है, निकल जाते हैं तो बुरा लगता है। पहले निकलने के लिए ही सोचते हैं कब निकलेंगे यहां से, और निकल जाते हैं तो बाद में सोचते कॉलेज लाइफ अच्छी थी, वहां कम से कम बंक तो मार देते थे, अब यहां जॉब में तो रीजन देना पड़ता है क्यों नहीं आए आप, वहां तो अटेंडेंस 75% कंपलसरी थी, यहाँ तो 100% अटेंडेंस कंपलसरी है। सोच रहे थे पढ़ने लिखने के बाद आनंद लेंगे, लेकिन यहाँ आनंद छिन गया। तो संसार में प्रायः जो सुख दुख है ये आता है और चला जाता है। संसार में किसी भी वस्तु से या तो हमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, लेकिन कोई भी वस्तु हमारे पास एज इट इज सदा रहने वाली, क्योंकि हम ही स्वयं एज इट इज नहीं रह पाते। संसार में एक ही चीज कांस्टेंट है, क्या है वो? दैट इज द चेंज विच डज नॉट चेंज, दैट इज द चेंज विच डज नॉट चेंज, विच इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इन द कॉस्मोस। दुनिया में एक ही चीज कॉन्स्टेंट है और उसको कहते हैं चेंज, और ये निरंतर होता रहता है। ये निरंतर होता है संसार, हम चाहें या न चाहें। प्रॉब्लम इज दैट we all living entities we are trying to resist with this change, hum sabhi is change ko rokne ka bharsak prayas karte hain, change ruk jaye, job permanent, construction permanent, youthness permanent, isliye cream lagate hain ever यूथ, कुछ भी लगाओ, कुछ चेंज चाहते हैं हम, जैसे कोई काला कलूटा हो तो फेयर एंड लवली लगाएगा जिससे फेयर हो जाए वो, लेकिन ही कैन नॉट रिमेन फेयर फॉर फॉर एवर, उन जो फेयर होते हो लवली लगते, इसलिए फेयर एंड लवली लगाते, लेकिन उसको कांस्टेंट नहीं रख सकते, वो आपकी फेयरनेस थोड़ी समय में चली जाएगी। तो हम शुरू से चेंज चाह रहे थे, काले से गोरे हो जाएं, अब गोरे एज इट इज बने रहे, लेकिन वो बन नहीं सकते, उसमें भी तो चेंज आएगा ना। तो कुछ हम चेंजेस बहुत जल्दी चाहते, इतना जल्दी चाहते हैं, अरे यार ये मूछों में ताव देता रहता है, मेरे मूछे ही नहीं आई इसलिए रेजर घुमा, जैसे जल्दी से क्या आ जाएंगी, मुझ आ जाएंगी। लेकिन जब आ जाती हैं तब जबरदस्ती रेजर घुमाना पड़ता है, और जल्दी जल्दी आ जाता है, बहुत परेशानी बन जाती है। तो हम बहुत सारी चीजों को चेंज चाहते हैं, और चेंज बहुत फास्ट चाहते हैं, लेकिन वो अपनी स्पीड से आता है और वो कंटिन्यू बना रहता है। लेकिन हम इस संसार में एक चीज चाहते हैं, वो क्या है? चेंज ना हो इतना ज्यादा, हम उसके खिलाफ रेजिस्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या हम सफल हो पाते हैं? नहीं, Now question raised, how this change is getting place, how this change is going on? इस संसार में कौन सी ऐसी ताकत है जो इसको निरंतर परिवर्तन करती है संसार? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा है क्या? है कोई बता सकता है? हाँ, हाँ वंडरफुल, यस, अच्छा पढ़ाई लिखाई करता है इसका। बोले किसी भी वस्तु का जो पोजीशन है वो उसी पोजीशन में रहेगी, चाहे वो चलती हुई है या रुकी हुई है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो चेंज इन पोजीशन दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सम फोर्स। सो इफ वी आर सीइंग द चेंज इन द कॉस्मोस इन एवरी कंडीशन, मीन्स देयर इज सम फोर्स बिहाइंड दैट चेंज। और सारा संसारी चेंज हो रहा है, इस सारे संसार के पीछे फोर्स क्या है जो सारे संसार को बदल देती? कौन सा फोर्स है? नेचर। ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, स्वागत है आपका। बैठिए, नेचर और कुछ बता सकता है कोई? भगवान, ठीक है। प्रकृति, काल और सोली बची है बस। अर्थात हम स्वयं भी तो चेंज करते हैं ना, हम स्वयं भी हैं उस फोर्स। ये पांच शक्तिशाली चीजें हैं जो चेंज करती हैं सारे संसार, चेंज ला देती हैं। उसमें हम स्वयं हैं, हम स्वयं को भी थोड़ा चेंज चाहिए यार। लेकिन हम सभी पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस आ जाते। ऐसा चेंज कैसे आ गया, मैं इसको कैसे झेलूं? जैसे कोई अच्छा मुनाफा कमा रहा हो तो सोचे फैक्ट्री में थोड़ा चेंज चाहिए, आग लग जानी चाहिए, ऐसा कोई सोचता है? नहीं। कोई कई साल से टॉपर बना रहा है, बोले थोड़ा चेंज चाहिए, फेलियर होना चाहिए थोड़ा लाइफ में, ऐसा कोई सोचता है? या हर साल मुनाफा बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा घाटा भी हो जाना चाहिए एक साल, तभी पता चलेगा। बोले बिना दुख के सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, ऐसा कोई नहीं चाहता। आइदर वी वॉन्ट टू हैव कॉन्स्टेंट बेनिफिट इन अवर लाइफ और वी वॉन्ट टू हैव सम चेंज इन बेनिफिट, that must be in positive direction। जैसे हम लोग बचपन से सोचते हैं, हाँ मैं बड़ा कब होऊंगा, मैं बड़ा कब होऊंगा, फिर क्या ऐसा सोचते हैं, मैं बूढ़ा क्यों होऊंगा, बूढ़ा कब होऊंगा, ऐसा सोचते हैं, बूढ़ा क्यों हो रहा हूं? लेकिन वो भी चेंज झेलना पड़ता है, वो चेंज भी हमारे हाथ में नहीं है, वो चेंज के पीछे और भी फोर्सेस हैं। बोले ये फोर्सेस हैं पांच मुख्य रूप से, जो आप सबने ही बताया। एक तो प्रकृति, अचानक से भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सारा भौगोलिक स्थितियां ही चेंज कर दी। अच्छे भले करोड़पति लोगों को रोड़पति बना दिया, मकान बह गया, बहुत सारी चीज परिस्थितियां चेंज हो जाती जो प्रकृति के कारण। देश के देश डूब जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती। सुनामी आया, कितने सारे लोग बेचारे मारे गए। प्रकृति इस चेंज को लाती है, बहुत सारे लोग आखिरी में सब मटका भगवान पे फोड़ देते, और भगवान की सृष्टि है ही, तो भगवान का भी तो थोड़ा बहुत रोल होगा कि नहीं होगा, सृष्टि उनकी है तो नेगेटिव चेंजेस के लिए एटलीस्ट हम उसको जिम्मेदार ठहरा देते, पॉजिटिव के लिए तो हम है ही। जैसे एक गांव में एक व्यक्ति बहुत सारी चीजें अपनी छत से फेंकता था, बढ़िया बढ़िया पार्ले जी के बिस्किट्स के पैकेट्स, गुड डेज के पैकेट्स, घी का पैकेट, दूध का पैकेट, ब्रेड के पैकेट फेंकता था, और गांव के लोग आकर के उसके पास आकर के सब चीजें लूट लूट के ले जाते थे, आपस में झगड़ा करते थे, मेरे को घी चाहिए, वो कहता था मेरे को बासमती राइस चाहिए, मेरे को आटा चाहिए, ये चाहिए, पैकेट को लेके झगड़ा करते थे। लेकिन कभी कोई अप्रिशिएट नहीं करता था कि हाँ यार ये व्यक्ति हमारे लिए इतना कुछ कर। एक दिन वो साधु के पास गया, वो बोला कि मैं इतना सब कुछ देता हूं लेकिन इनमें से कोई मेरे को अप्रिशिएट नहीं करता, क्या किया जाए, मेरी ओर देखते तक नहीं, नीचे ही देखते हैं बस कौन सी पैकेट हाथ में पड़ जाए। उसने बोला एक दिन ऐसा करना, जैसे ही वो आए ईंटें फेंकना ऊपर से छोटे छोटे। उसने एक दिन ऐसे ही ईंटें फेंकना चालू किया, लोगों को लगा, तब लोगों ने किधर देखा, ऊपर देखा, यू आर ट्राइंग टू किल अस, यू आर द कॉज ऑफ आवर किल। तब उसको इतना एप्रिसिएशन दे रहे हैं वो लोग इन द फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म, तुम ही कारण हो इसके, तुम ही कारण, तुम ही ऐसा कर रहे हो। तो उसको बड़ा शौक लगा, आज तक कभी ऊपर नहीं देखा था इन लोगों ने कौन क्या पैकेट फेंक रहा है, आज मेरे को रिकॉग्नाइज किया, बढ़िया आइडिया दिया। तो कई बार संसार में हमारे साथ जो अच्छा होता है उसका क्रेडिट तो हम ले ही लेते हैं, बढ़िया बढ़िया पैकेट से उठा के चल पड़ते, मैंने ये लूट के लाया, कहां से आया ये कोई लेना देना नहीं। लेकिन कभी जब दुख आता है, जब नेगेटिव को चेंजेस आ जाते हैं, तब किसको कारण ठहराते हैं, भगवान। ठीक है, मान लेते हैं वो भी एक शक्ति है, हालांकि उसके मूल कारण हम ही थे कि हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, तो भगवान को थोड़ा सा पत्थर मारना पड़ा हमारे कर्मों के अनुसार, क्योंकि कृतज्ञता है, कृतज्ञता नहीं, पत्थर मारा थोड़ा एकदम से अकल आ गई। भगवान भी एक कारण हो सकते हैं, मान लेते प्रकृति हो गया, भगवान हो गए, हम स्वयं और काल। टाइम स्टार्ट्स नाउ, जैसे ही टाइम चालू हो जाता है आदमी काम करने लगता है, उसमें चेंजेस आने लगते हैं। मुख्य रूप से ये सब कारण हैं, लेकिन ये सब दिखाई भी देते हैं लेकिन काल दिखाई नहीं देता, लेकिन काल बहुत शक्तिशाली कारण है। इसलिए इन पांच के पांच फोर्सेस को ही भगवत गीता में डिस्कस किया, ईश्वर, जी, प्रकृति, काल और कर्म। दीज आर द रूट कॉज ऑफ द सो कॉल्ड चेंजेस विच आर ऑलवेज कॉन्स्टेंट इन दिस मटेरियल। नथिंग इज कॉन्स्टेंट, इवन वैल्यू ऑफ जी वी आर सीइंग इट्स कॉन्स्टेंट 9.81, बट इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज इन अवर कमिंग सिलेबस। So in this material world, nothing is constant except the change. And which keeps this changing continue? That main force is कि कोई उनको हिला रहा है। हाँ, पत्तियां हिल रही है ये स्टेटमेंट प्रॉपर है या हवा बह रही है ये स्टेटमेंट प्रॉपर है? पत्तियां हिल रही है ये स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं है। पत्तियां हिल रही है क्यों? क्योंकि हवा बह रही है। लेकिन हवा बहती हुई दिख नहीं रही है, पत्ती हिलती हुई दिख रही है, तो हम क्या स्टेटमेंट दे देते हैं? पत्तियां हिल रही। जबकि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? हवा चल रही है। देखो, द कॉज ऑफ मूविंग ऑफ द लीफ इज फ्लोइंग ऑफ द एयर। एयर इज द कॉज एंड इफेक्ट इज मूवमेंट ऑफ द लीफ। कॉज नहीं भी दिखाई दे रहा है तो एक बुद्धिमान व्यक्ति उस इफेक्ट से उस कॉज को देखना चाहिए। That is called sign of intelligence. Then he starts working over the cause. Otherwise he will not. तभी वो उस कारण पे काम करेगा, अन्यथा कारण पे काम नहीं करेगा। जैसे हम किसी को पूछें, अरे तू तो इतना बड़ा हो गया, दिखाई दे रहा है इतना बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा होने के पीछे कारण क्या है? काल, 10 साल बीत गए। तो कभी मिलेंगे तो ये नहीं कहेंगे, हाँ अरे 10 साल हो गए। उसके बड़े होने में चेंज हुआ ना, छोटे शरीर से इतना बड़ा शरीर हो गया। दैट वाज नथिंग बट द चेंज ऑफ द बॉडी। तो चेंज किस कारण से हुआ? 10 साल बीत जाने के कारण। इसलिए हम मिलेंगे, ओ 10 साल हो गए, ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन हम उस सालों को नहीं देख पाते, हम क्या देख पाते हैं? बड़ा हो गया ये। इसलिए व्यक्ति को जब उसका पीछे का कारण पता चलता है, तब उस कारण के साथ अपने आप को रिलेट कर पाता है और फिर उसमें कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा, नॉर्मली ले लेगा, ठीक है ये कारण था। तो इस संसार में चेंजेस के रूप में ही हमारे जीवन में क्या आते हैं? सुख और दुख। चेंज ऑफ द कॉस्मोस गिव्स अस द सेम चेंज लुक लाइक समटाइम्स हैप्पीनेस एंड समटाइम डिस्ट्रेस। सो इट्स नथिंग बट द चेंज। और चेंज के पीछे का कारण क्या है? काल, हमने देखा। और ये काल कब शुरू होता है? जब सृष्टि की शुरुआत हो जाती है। और खत्म कब होता है? जब सृष्टि खत्म हो जाती है। सृष्टि कब शुरू होती है? जब भगवान विष्णु सांस छोड़ते हैं। जब भगवान विष्णु सांस छोड़ते हैं तब सृष्टि पिक्चर में आ जाती है। और जब भगवान विष्णु सांस लेते हैं तब सारी सृष्टि अंत को प्राप्त हो जाती है। So time starts when Lord Vishnu exhales, and time ends when Lord Vishnu inhales. जैसे आपका समय स्टार्ट होता है इतने साल की बाप मशक्कत कैद, कब? जब हम जेल में जाते हैं। और आपका समय समाप्त होता है कब? जब हम जेल से वापस आते। ऐसी सृष्टि की शुरुआत जब होती है, भगवान विष्णु सांस छोड़ते तब काल आ जाता है और उस काल के अनुसार हमें बहुत सारे चेंजेस झेलने पड़ते हैं। तो मुख्य कारण क्या है? काल। और काल के कारण सुख दुख आना ही आना है। कभी वो चेंज दुख का रूप लेगा, कभी वो चेंज सुख का रूप लेगा। अब वो हमारे हाथ में है क्या? जब तक हम इस सृष्टि में आना जाना रखेंगे तब तक हमारा चेंज कभी खत्म होगा? ये प्रिंसिपल है। जब चेंज खत्म ही नहीं होगा तो सुख दुख की श्रृंखला कभी खत्म होगी नहीं। तो फिर उपाय क्या है इस सुख दुख के चक्र से बाहर जाने का? इस सृष्टि में आने जाने का चक्र ही खत्म होना चाहिए। इस चक्र से बाहर निकल जाए, समझ में आया? इससे परे एक और सृष्टि है जिस जो शाश्वत है, जहां काल है ही नहीं। जैसे कभी कोई व्यक्ति ये कह सकता है किसी के बारे में, जेल से बाहर वाले व्यक्ति को, कि तुम्हारे लिए इतने साल है ना, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कोई कह सकता है ऐसा? तुम इतने साल तक के लिए मेहमान हो यहां पर। जेल से बाहर भी एक दुनिया है, एक जेल के अंदर भी दुनिया है। जेल के अंदर टाइम स्टार्ट हो जाता है, जेल के बाहर टाइम नहीं है एक प्रकार से। हालांकि जेल के बाहर टाइम है हमारी सृष्टि में, लेकिन जब हम जेल के साथ कंपेयर करें तो ऐसा नोइंगली हमारे सामने टाइम नहीं है जैसा जेल के अंदर दिया जाता है, समझ रहे हैं? क्योंकि ये सृष्टि ही अपने आप में जेल है, भगवान की आध्यात्मिक सृष्टि के कंपैरिजन, भगवान के वैकुंठ जगत के कंपैरिजन में इस संसार को कुंठ जगत कहा जाता है, तो उसके कंपैरिजन में ये सृष्टि जेल की तरह है। इसलिए इस सृष्टि में समय का बंधन है, लेकिन इस सृष्टि के अंदर भी आप देखेंगे तो हम लोगों में से कोई ऐसा सोचता नहीं, किसी को ऐसा पता नहीं कि कब मरेंगे हम। लेकिन जेल में जाने के साथ हमारा टाइम चालू हो जाता है। इसलिए जैसे इस सृष्टि के कंपैरिजन में हम जेल को समझ रहे हैं और जेल के साथ इस सृष्टि को समझ रहे हैं, जेल के बाहर की दुनिया को समझ रहे हैं, ऐसे ही हमें इस सृष्टि के कंपैरिजन में आध्यात्मिक जगत को समझना चाहिए और आध्यात्मिक जगत के कंपैरिजन में इस संसार को समझना चाहिए। बाउंस तो नहीं मार रही है बातें? समझ में आ रहा है ना? जैसे जेल में टाइम स्टार्ट हो जाता है, जेल से बाहर नहीं, ऐसे ही संसार रूपी जेल में टाइम स्टार्ट हो जाता है, इस संसार से परे वैकुंठ जगत में नहीं। तो हमारा उद्देश्य जेल में जाना होना चाहिए क्या? या कोई जेल में चला गया तो उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? जेल से बाहर आना। ऐसे ही हमारा उद्देश्य इस संसार में आना ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर आ गए तो अब क्या उद्देश्य होना चाहिए? इससे बाहर जाना। और इससे बाहर जाने का मतलब है भगवान विष्णु की सांसों से बाहर निकल करके उनके साथ उनके घर में चले जाना, वैकुंठ। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आइडियली यही उद्देश्य हमारे लिए काम का है, ये प्रिंसिपल है। समझ में आया? लेकिन संसार में ये जो चेंज देखा जाता है, इस चेंज में सुख और दुख कॉन्स्टेंट नहीं है सबके लिए। अर्थात सबको जीवन में इस समय में एक जैसा ही दुख मिलेगा और सबको इस जीवन में इस समय में अब एक जैसा ही सुख मिलेगा। क्या ऐसा कॉन्स्टेंट है? नहीं। सुख और दुख आना संसार में ये कॉन्स्टेंट है। दूसरे शब्दों में बड़े दुख से छोटा दुख आना और छोटे दुख के बाद बड़ा दुख आना, अर्थात बड़े दुख से छोटा दुख जो आ रहा था वो सुख जैसा लग रहा था, वास्तव में वो सुख था ही नहीं। इसलिए इसको और रिफाइंड शब्दों में कहा जाए तो बड़े दुख से छोटा दुख आना और छोटे दुख से बड़ा दुख आना ये कॉन्स्टेंट है। दिस इज बिकॉज ऑफ टाइम, दिस इज बिकॉज ऑफ टाइम। अब समय हमारे हाथ में है क्या कि हम समय के हाथ में? हम समय के हाथ में हैं, लेकिन हमें लगता नहीं। हम सोचते हैं मेरे हाथ में टाइम, इस बात को सूर्य देव जानते हैं और वो समय के अनुसार काम करते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं हमारे अनुसार समय काम करे। हम समय के अनुसार काम नहीं करना चाहते। हम सूर्य देव से भी बड़े हो गए, लेकिन आचार्य समझाते हैं भैया समय बहुत शक्तिशाली है। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। और हमें समय का ध्यान ही नहीं रहता। कोई ऐसा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं है जिस समय में हम इस काल के द्वारा इफेक्ट ना हो रहे हो। जिस दिन आया तो धरती पर काल चला हम जो भी बनकर, जिस दिन आया तो धरती पर काल चला हम जो भी बनकर, पता न किस पल धर बैठेगा, पता न किस पल धर बैठेगा। हम जोली कहते हैं एक ऐसे कपल को जो साथ साथ चलते हैं कंधे से कंधा मिला करके। तो ये काल मृत्यु रूपी तो है ही, हर समय हमें अपने वश में रखता है, हमें चेंज अपने जीवन में लाने के लिए विवश करता है। पता न किस पल धर बैठेगा, आखिरी मृत्यु के रूप में तो पता नहीं किस समय गला दबा देगा, उसके हाथ में ही हमारा गला है। मूरख रुत पहचान रे, मूरख ऋतु पहचान रे, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। इतना समझ में आया? कोई बता सकता है क्या क्या समझ में आया अभी तक जो समझाया गया? आप तो गागर में सागर को भरने की महारत है आपको, इसलिए आप एक सेंटेंस में क्या एक शब्द में ही बोल सकते हैं। कोई बता सकता? हाँ बिल्कुल, संसार में रावण भी नहीं रहा, कुंभकर्ण भी नहीं रहा। कुंभकर्ण की बड़ी सामर्थ्य थी समय के बारे में, तो बहुत जन अलेक्जेंडर भी नहीं रहा, कोई नहीं रहा। ये तो अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए अभी तक इस मैसेज से जो अभी तक देने का प्रयास किया, इसमें से हमने क्या समझा आप बताएंगे प्लीज? यस क्वेश्चन बाद में पूछना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्लास के बाद प्रश्न करना। अभी मैंने जो उत्तर दिया है समझाया अभी तक, उसमें से क्या समझ में आया? अच्छा प्रयास किया आपने, समय उसका कारण है, व्यक्ति वस्तु प्रकृति जो कुछ भी है ठीक है, उसका हमने मुख्य कारण का समय बताया, तो हमें और क्या समझाया गया? Please sit down. Have a clap for him. Nice. आप बताएं प्लीज, आपके आगे जो बैठे हुए आप बैठ के ही बता दो, कोई बात नहीं।
वहाँ पे
नाइस। आप लोग ऐसा नहीं सोचना यार, बहुत समय स्कूल में भी खड़े होकर के उत्तर देने पड़ते थे, वहां भी खड़ा किया जाता था और इज्जत का कचरा हो जाता था कई बार। यहाँ भी ये सिस्टम इन्होंने चालू कर दिया, तो पता नहीं अगली बार से जाना थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जाएं कि नहीं जाएं क्लास, या खाली प्रसाद के समय में ही पहुंचे हैं। नहीं, ये उद्देश्य नहीं है। ये उद्देश्य है कि वास्तव में यहाँ जो मेहनत करके आप आए हैं और हम जो मेहनत कर रहे हैं, ये फ्रूटफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें वास्तव में कोई चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही। हमने मुख्य रूप से अभी तक जो बताया वो बताया कि संसार में सुख और दुख ये एक चेंज है, और दुनिया में चेंज ही कांस्टेंट है, बाकी कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। इसके कारण स्वरूप पांच कारण बताए, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ठीक है, ये पांच मुख्य रूप से कारण हैं। इनमें विशेष रूप से जो हमें दिखाई नहीं देता, जो सृष्टि के शुरू से ही चालू हो जाता है और सृष्टि के अंत तक चलता है, वो है काल। काल मुख्य रूप से परिवर्तन का कारण है। इस परिवर्तन के रूप में हम कभी सुख पाते हैं, कभी दुख पाते हैं। वास्तव में दुखालय मात्र संसार है, इसलिए यहां कभी बड़ा दुख पाते हैं, कभी छोटा दुख पाते हैं। अर्थात वास्तव में यहां संसार में केवल दुख ही मिलता है हमको, और ये दुख का मूल कारण क्या निकला हमारा, काल। अभी तक हमने जो देखा, और जो काल कारण निकला, मतलब चेंजेस तो होने हैं ही और काल हमारे वश में है नहीं, ये भगवान विष्णु की श्वास है, तो ये चेंजेस आने ही है। अर्थात बड़े दुख से छोटा दुख, छोटे दुख से बड़ा दुख, बड़े दुख से छोटा दुख, छोटे दुख से बड़ा दुख। अर्थात बड़े दुख से छोटा दुख आया तो सुख लगाओ, तो दुख से सुख, सुख से दुख। वास्तव में बड़े दुख से छोटा दुख ही है, दुख से दुख, दुख से दुख, दुख से दुख। संसार में दुख के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसका कारण क्या है, काल। तो हमने क्या सीखा, हमें कैसे भी इस काल से बाहर जाना है। हमने अभी तक क्या सीखा, इस काल से बाहर जाना है, और ये सृष्टि सारी काल के अधीन है, अर्थात इस सृष्टि से बाहर जाना है। काल से बाहर जाने का मतलब इस सृष्टि से बाहर जाना। ये सृष्टि कैसी है, जहां काल लागू है, एक जेल की तरह, अर्थात इस जेल से बाहर जाना है, अर्थात इस कुंठ जगत से वैकुंठ की ओर जाना है। इतना समझ में आया, अब भूलना नहीं इसको, पूछेंगे फिर से आप। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि इस काल के कारण सारे संसार में चेंज कांस्टेंट है, और वो चेंज वास्तव में दुख रूपा है। चेंज कैसा है, दुख रूपा है। कोई भी पोजीशन पे आप देख लो, जब बच्चे होते हैं तब कैसा सोचते हैं, बड़े कब होंगे, यहां तो बहुत कष्ट है यार, एक एक रुपए के लिए मोहताज रहना पड़ता है, तू दे दे 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। मामा जी के पास जाते हैं, वहां भी देखना पड़ता है ये ज्यादा पैसा देगा, उसको ही संभाल करके रखते हैं, पॉकेट मनी का बहुत टेंशन होता है। और ये लोग आए दिन ऑर्डर पेलते रहते हैं, भाई अब पानी ला मेरे लिए, चल ये काम कर, चल वो काम कर, जब देखो तब ऑर्डर देते रहते, अपनी इच्छाओं को कोई महत्व देता ही नहीं, उल्लू बना देते, बड़े कब होंगे। और जब बड़े हो जाते हैं तब क्या सोचते हैं, छोटे अच्छे थे, बड़े हो जाते तो क्या सोचते हैं, छोटे अच्छे थे। कभी बिजनेस हमारे हाथ में नहीं होता तो हम सोचते हैं मेरे हाथ में बिजनेस कब आएगा, और कभी कभी सोचते हैं इसको कौन संभालेगा, मैं कब तक संभालूं। संसार में सर्वत्र इवेंचुअली दुख का ही अनुभव होगा, क्योंकि संसार है ही दुख आलय। तो हमें इस दुखालय से सुख आलय में जाना है। किधर जाना है? दुखालय से सुखालय में जाना, इस काल चक्र से बाहर जाना है। इतना समझ में आया? दूसरा, हम एक चेंज देखते हैं इस काल के कारण। तो हम इस चेंज को देखते ही हैं कि सारे संसार में बड़े दुख से छोटा दुख, छोटे से बड़ा दुख, बड़े से छोटा दुख, अर्थात थोड़ा सुख थोड़ा दुख, ऐसा लगता है हमें संसार। ये तो एक चेंज सबके जीवन में है, ये चींटी से लेकर ब्रह्मा तक। लेकिन ये चेंज सबके जीवन में वेरिएबल है। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो कोई ज्यादा दुखी है उसी समय में, तो कोई कम दुखी है। किसी को उसी कंपनी से ज्यादा फायदा हो रहा है तो किसी को उसी से घाटा झेलना पड़ रहा है। किसी के पास ज्यादा बच्चे हैं तो किसी के पास बच्चे ही नहीं। ये सब काल के कारण ही हो रहा है ना। लेकिन काल के कारण भी चेंज कांस्टेंट सबके जीवन में होना चाहिए, लेकिन वो चेंज वेरिएबल है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारे व्यक्तिगत कर्म। उसका कारण है हमारे व्यक्तिगत कर्म। तो हमारे व्यक्तिगत कर्मों के कारण किसी के जीवन में ज्यादा बड़ा दुख आएगा तो किसी के जीवन में छोटा दुख आएगा। किसी ने पढ़ाई अच्छी की होगी व्यक्तिगत रूप से तो ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, किसी ने अच्छी पढ़ाई नहीं की होगी तो कम मार्क्स आ जाएगी, है कि नहीं? अब ये न्यूटन का दूसरा लॉ है, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसके कारण कौन है? हम स्वयं। थर्ड है, दूसरा मतलब कोई तो है दूसरा, पहले को छोड़ के मैं वो दूसरा बता रहा था, सेकंड नहीं। इट्स न्यूटन्स थर्ड, है तो न्यूटन का ही ना, दूसरा ही है ना पहले को छोड़ के, मतलब तीसरा है। तो नियम कौन सा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, नियम क्या है ये जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है। नियम ये है कि हमारे एक्शंस हमारे पास लौट के वापस आएंगे। तो बहुत सारे लोग जीवन में बहुत सारे दुखों को फेस करते हैं, इससे बचने के लिए व्यक्ति क्या करता है, वो कई बार एस्ट्रोलॉजी में जाता है। मेरे जीवन में ये दुख क्यों आया, उसके जीवन में तो नहीं आया, मेरे साथ ही ऐसा क्या हुआ। तो किधर जाते हम? एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं। ये भी एक साइंस है, ये ज्ञान देती है कि भाई तुम्हारे पीछे इसके पीछे क्या कारण था, और आपको उपाय बताती है कि इस कारण को इस क्रिया से आप दूर कर सकते हो। आप क्रिया ना भी जानो, अगर आपको पता ही चल जाए थोड़ा सा भविष्य का पहले से ही, तो आपको दुख थोड़ा कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। जैसे मान लो ठीक 2 बजे आपके गाल पे थप्पड़ पड़ने वाला है, और आपको कोई SMS करके आपका दोस्त बता देता है, देखना 2 बजे थप्पड़ पड़ेगा तेरे गाल पे, और कोई व्यक्ति मार के चला जाता है, और एक व्यक्ति को उसको मैसेज किया ही नहीं किसी ने, और उस समय 2 बजे ठीक आकर के कोई उसको थप्पड़ मार के चला जाए, दोनों में से कौन ज्यादा दुखी होगा? अचानक पढ़ने वाला जिसको मैसेज नहीं मिला। इसका मतलब खाली इतना ज्ञान हो जाना ही कि हाँ 2 बजे थप्पड़ पड़ने वाला है, ये दुख में कमी ला देता है कि नहीं? दुख में कमी आ जाती है इससे, लेकिन दुख दूर नहीं होता, दुख दूर नहीं होता। और उस मैसेज का अगर रीजन भी पीछे बता दिया जाए, उस मैसेज का रीजन भी बता दिया जाए, देख पिछले जन्म में तूने 10 थप्पड़ मारे थे एक व्यक्ति को, वो व्यक्ति अब ठीक 2 बजे तेरे गाल पर 1 थप्पड़ मार के उसका हिसाब चुकता करना चाहता है। कितने थप्पड़ मार के? 1, 9 माफ कर दिए उसने, ऐसा मैसेज कर दिया, और 2 बजे आया थप्पड़ मार के चला गया। अब आपको कैसा लगेगा? कम दुख लगेगा या सुख में बदल जाएगा वो एक थप्पड़। ठीक है यार, हिसाब पूरा हो गया, फटाक से एक मार दे जल्दी से, 9 तो माफ कर दिए कम से कम। तो किसी चीज का, किसी घटना का अगर हमें ज्ञान हो जाता है, उसका कारण पता चल जाता है, और तब ये लगता है ये व्यक्ति कारण नहीं है, कारण तो मैं ही था, मैंने ही इसको कितने मारे थे, 10। जैसे एक बार एक महात्मा थे, सत्य घटना, कई बार क्या होता है, एक महात्मा थे, सिद्ध महात्मा थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे, तो क्या हुआ, उनके अंदर ऐसी सिद्धि थी कि कहीं पर धन छुपा हुआ है उनको पता चल जाता था। जैसे कोई कठिन काम नहीं है, ये एक सिद्धि है, जैसे आजकल ONGC वाले जानते हैं कहाँ गैस छुपी हुई है, कहाँ पेट्रोल है, कहाँ डीजल है, पहले नहीं पता चलता था, उन्होंने टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस कर लिया अपने आप को, तो पता चल जाता। ऐसे इनको पता चल जाता था कहाँ धन छुपा हुआ है, तो चले जाते थे, लोगों को बता देते थे। एक बार इनके यहाँ बहुत एक व्यक्ति आया जो पुराने घर में रहता था, हवेली टाइप में रहता था, वो आया, उसको लगता था मेरी हवेली में कहीं ना कहीं मेरे पूर्वजों का धन गढ़ा हुआ है। आया, बोले महात्मा जी हमारे यहाँ चल करके थोड़ी सहायता करेंगे, थोड़ी कृपा करेंगे। ठीक है, मैं चलता तो सही आपके साथ, लेकिन अब मैंने जाना छोड़ दिया है। बोले क्यों? बोले मैं जाता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, किसी को बता देता हूँ, लोग ले लेते हैं, उसमें से मेरे कार्य को अप्रिशिएट करते नहीं, मेरे को कुछ देते नहीं, मैं कौन सा अपने लिए मांगता हूँ, मैं तो ठाकुर जी की सेवा के लिए प्रयास कर रहा था, लोग देते नहीं, लोग लोभ के शिकार हो जाते हैं, धन निकलते हैं, उनको लगता है ये हमारा ही है, बस 10-20-50 रुपया दे के लौटा देते, इसलिए मैंने जाना ही छोड़ दिया। बोले नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, आप हमारे साथ चलिए, आपको लगे कुछ देना चाहिए मेरे को तो आप हमें देना, बाकी आप ही ले आना लगे तो, क्यों वैसे भी हमारे तो किसी काम का है, हमें पता ही नहीं है, तो आप चलो। तो ये चल पड़े, चले गए, जाकर के इन्होंने बता दिया, वहां से धन निकला, तो धन निकला तो उसमें रत्न निकले, तो इन्होंने कुछ रत्न अपने लिए ठाकुर जी की सेवा के लिए रख लिए, जो नियम के अनुसार होना चाहिए, अर्थात एक गृहस्थी व्यक्ति को नियम के अनुसार भगवान की सेवा के लिए अपनी इनकम का 50% देना चाहिए शास्त्र के अनुसार, देन ही इज आइडियली गृहस्था, अदरवाइज ही इज गृह मेधी, वो गृहस्थ के नाम पर कलंक है। तो उन्होंने उचित मात्रा में वो ले लिया और उसको छोड़ दिया। बाकी साधु को भी अत्यधिक लोभी नहीं होना चाहिए, तो ये चले आए वहां से लेकर के। अब जब ये चल रहे थे तो बड़ी तेजी से चल रहे थे, अंधेरा हो रहा था, सोच रहे थे जल्दी से पहुंच जाए, चोर उचक होगा, कुछ कह नहीं सकते। तो एक सिद्धि चोरों के पास भी होती है, वो भी देख लेते हैं किसकी पॉकेट में कितना माल है, नजर से ही, चाल ढाल से ही सब पता चला लेते। जैसे पुलिस वाले चोरों को पकड़ लेते हैं, लिखा थोड़ी रहता उनके माथे पर कि चोर, उनके चाल ढाल से वो पकड़ लेते हैं कि हाँ ये सस्पेक्ट इस पर्सन, तो चोर भी पकड़ लेते हैं ये कुछ छुपा के ले जा रहा है, जल्दी है कुछ ज्यादा इसको। तो 11 चोर थे, उन्होंने इनको चारों तरफ से घेर लिया। जब घेर लिया तो ये तो महात्मा है, ये तो अटैच है नहीं संसार में किसी वस्तु से, जैसे बहुत सारे लोग जब 1000 के नोट में से आत्मा निकाल दिया मोदी ने, उसको डेड घोषित कर दिया, तो बहुत सारे लोग ही मर गए सीधे, हम तो कंगाल हो गए। लेकिन इन्होंने तुरंत समझ लिया, तुरंत इन्होंने सारे के सारे रत्न इन चोरों को दे दी, ले लो भाई, जान है तो जान है, ये लो, मैं तो भक्ति करूंगा अपना। लेकिन चोर आश्चर्य में डूब गए, यार इतने सुंदर रत्न ये, और इसने पहली बार में सीधे फटाक से दे दिए, ऐसा लगता है इसका राजा से गहरा संबंध है, और राजा चाहे तो चोरों को जमीन में से भी निकाल करके ढूंढ के ला सकता है, इसलिए इतना आसानी से इसने दे दिए, इसका मतलब चैलेंज के साथ दिए, इसने ले जाओ देखते हैं कब तक आप अपने पास रखोगे, निकलवा के दिखा दूंगा, ऐसा चोरों ने समझा। तो चोर सोचने लगे बड़ा आदमी लगता है या बड़े लोगों से संबंध लगता है इसका। तो सब लोगों ने मीटिंग किया, क्या किया जाए। बोले सुराग ही मत छोड़ो, क्या करो इसको साफ कर दो। तुरंत उन्होंने हथियार तलवार वगैरह निकाल लिया। बोले अब ये क्या कर रहे हो। बोले मारेंगे हम तुम। बोले मारोगे। बोले हाँ मारेंगे, लेकिन क्यों, मैंने तो सब कुछ दे दिया। बोले नहीं, हम सबूत को मिटाएंगे। अब तो बड़ी हैरानगी, बड़ा भय अंदर घुस गया इनकी। इन्होंने सोचा चलो ठीक है, मारना मार लेना, थोड़ा मेरे को अपनी नित्य क्रिया तो कर लेने दो, यमुना के किनारे की बात है। तो बोले मैं यमुना में स्नान करके जस्ट वापस आता हूँ, आप मार लेना, कम से कम भजन तो कर लें आखिरी समय, भजन की बड़ी महिमा है, भगवान के नाम की बड़ी महिमा। तो ये चले गए अंदर यमुना में स्नान करने के लिए। यमुना में स्नान करते हुए इन्होंने गुरु जी की याद किया, इनके गुरु सिद्ध थे, सच्चे गुरु सिद्ध होते। इन्होंने गुरु जी का आह्वान किया, गुरुदेव रक्षा करो। तो गुरु जी सामने आकाश में प्रकट हो गए। दैवी शक्तियां ऐसी होती हैं गुरुजनों के पास। प्रकट हो गए तो गुरु जी के चरणों, गुरुदेव मैं बहुत फंस गया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे प्रयास करते हैं परिस्थिति में फंस जाने के कारण। तो गुरु जी इनके सामने प्रकट हो, बोले अरे चिंता मत करो, डरो मत। इनको बड़ी शांति मिली और सोचने लगे गुरु जी अब कुछ उपाय बताएंगे। तो गुरु जी कहते देखो तुम एक काम करो। बोले क्या, मर जाओ इनके हाथों। क्या हो जाओ, मर जाओ। तब तो इनको बड़ा दुख लगा। गुरुजी को बुलाया रक्षा करने के लिए और उपाय क्या बता रहे हैं, चिंता मत करो ऐसा भी बोल रहे हैं, और फिर क्या कह रहे हैं, मर जाओ एक काम कर दो। इनको बड़ा शौक लगा, ऐसा गुरु, ऐसा गुरु जो हमें साथ ना दे, हम तो गुरु को ही छोड़ देंगे। प्राय हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे अनुकूल कोई इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए, लेकिन गुरुजी कड़वे बोलते हैं कई बार जो हमें अच्छा नहीं लगता है। और ये कितना कड़वा है, ये तो नीम आदि को भी पीछे छोड़ गया, मर जाओ बोले। इसको कहते गुरु वचन कड़वे लगे, ये विचारो आप, कड़वी औषधि बिन पिए मिटे न तन का ताप। ठीक है कड़वी औषधि ठीक है, लेकिन ताप ठीक हो जाता, मरने से तो बचाया जा रहा है ना, यहां तो मरने के लिए कहा जा रहा है। बोले आप मरने के लिए कह रहे हैं मेरे को। बोले हाँ मैं मरने के लिए कह रहा हूं। अब इसका कितना बड़ा दुख होगा, कोई सहारा ही नहीं चाहता। लेकिन सच्चे गुरु ऊट पटांग जवाब नहीं देते, उसके पीछे आधार भी बताते, उसके पीछे लॉजिक भी देते, रीजन भी देते। गुरु जी ने कहा देखो बहुत सारी चीजें तुम नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूं। बोले बताइए मेरे लिए मरना कैसे उचित है। बोले देखो पिछले जन्म में तुमने इन 11 लोगों की हत्या की थी। क्या किया था, इन 11 लोगों की हत्या की थी। नियम के अनुसार एक एक व्यक्ति ने तुम्हें 11 जन्म लेने पर तुम्हारी हत्या होनी चाहिए, तभी तो हिसाब किताब बराबर होगा ना। तो उसके लिए तुम्हें 11 बार गर्भ में जाना चाहिए, फिर छोटे से लेकर के धीरे धीरे बड़े होना चाहिए, फिर ABCD पढ़ना चाहिए, फिर सारे स्कूल का बोझा लाद करके चलते चलते फिर 12वीं BSc इंजीनियरिंग वगैरह करने के बाद फिर एक व्यक्ति आना चाहिए और आपको उड़ा देना चाहिए, फिर आपको मर के जन्म लेना चाहिए, फिर ऐसा प्रोसेस अपनाना चाहिए। तो ये कितने बार चलेगा, 11 बार। लेकिन तुम भक्ति मार्ग में आ गए, इसलिए भगवान की सृष्टि होने के कारण भगवान ने क्या किया, तुम्हारे इन कर्मों को क्षमा कर दिया काफी कुछ, और क्षमा करते हुए इन 11 के 11 लोगों को इकट्ठा कर दिया। और 11 के 11 लोगों को इकट्ठा करने के बाद आपको केवल एक ही बार मरने का दंड दिया जा रहा है, इसलिए आपके लिए पनिशमेंट कम रिवार्ड ज्यादा है। आप क्या हो जाओ, मर जाओ। इसको कहते हैं ज्ञान। क्या कहते हैं इसको, ज्ञान। अब जैसे ही उसको ये ज्ञान मिला वो तो आश्चर्य में डूब गया, बाप रे बाप, मेरे को 11 बार मरना था, अब मात्र कितने बार मरना है? एक बार। जैसे कई बार बच्चों को पढ़ाते हैं और पनिशमेंट देते हैं जब वो ठीक से नहीं पढ़ता, जैसे मैं पढ़ाता था कई बार, तो छोटे बच्चों को जब मैं पढ़ाता था तो मुर्गा बनाता था, तो बच्चे कहते थे प्रभु जी मुर्गा नहीं, कोई दूसरा पनिशमेंट दे दो। मैं कहता ठीक है हाथ खड़े कर लो। फिर थोड़ी देर हाथ खड़े करने के बाद नहीं नहीं मुर्गा ही ठीक है, मैं मुर्गा बन जाता हूँ, हाथ खड़े मत करो। फिर मुर्गा बन जाते थे। तो कई बार हमें, और पनिशमेंट में अगर थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया जाए, ठीक है तेरे को 3 घंटे के लिए हाथ खड़े करने पड़ेंगे, उतनी देर में अगर कहा जाए चल ठीक है 10 मिनट, तो फटाक से करेगा कि नहीं? जैसे किसी को पनिशमेंट दिया जाए 100 कोड़े और इतनी देर में दूसरा व्यक्ति आ जाए इसके 99 कोड़े माफ कर दो, एक दे दो बस नाम मात्र के। सांकेतिक दंड कहते इसको, कितनी खुशी मिलेगी ना, ठीक है जल्दी से मार लो एक कोड़ा मुक्त करो। ऐसे ही ये व्यक्ति को इतनी खुशी मिली कि बड़ी खुशी खुशी में बाहर आया यमुना से निकल करके, मारो मेरे को जल्दी से। अब पहली बार इन चोरों को कोई व्यक्ति ऐसा लगा जो स्वयं से कह रहा है मारो, और इसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं जरा सी भी, और खुश है। देखो ज्ञान का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी के पीछे भागते हैं, हमें पता तो चले ऐसा क्यों हो रहा है, जो घटना बता दी जाती है ना, हार्ट अटैक होने वाला है और 8000 पहले से होने वाला था, बचपन में ही बता दिया था। तेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी, पता है मेरे को तू जाने वाली, पहले ही बता दिया था। लेकिन 3-3 गर्लफ्रेंड ने बोले मेरे हाथ में, ये भी बता दिया था, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। आदमी को पता रहता है कई बार तो कितना अच्छा लगता है ना उसको, दुख कम होता है लेकिन सुख भी कम मिलता है, फिर क्यों, पहले से ही पता है ऐसा होने वाला है, सुख का भी वो आनंद नहीं आता, लेकिन ठीक है फिर। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। भगवान के पिताजी ने भी गर्ग मुनि से हाथ दिखवाया था, देखो इसका हॉरोस्कोप देखो भविष्य में क्या बनने वाला। चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन पे भी दिखाया गया था, नामकरण किया गया, बोले विश्वम भर इसका नाम होगा, सारे विश्व का पेट भरेगा, बड़ा अच्छा लगा। रूपा जी का भी हॉरोस्कोप उनके पिताजी ने दिखाया था, बोले आने वाले समय में धर्म धुरंधर होगा, 108 मंदिरों का निर्माण करेगा, धर्मध्वजी होगा, समुद्र पार करके जाएगा और वहां पर मंदिरों की स्थापना करेगा, धर्म की स्थापना करेगा, रूपा जी के पहले ही बता दिया। और उनके पिताजी ने उस प्रकार से तैयारी भी, इनकी जब शादी हुई, शादी जिससे हुई उतनी सुंदर नहीं थी, तो प्रभुपा जी अचानक से, अभय नाम था उस समय प्रभुपा जी का, तो प्रभुपा जी दूसरी लड़की ढूंढ रहे थे खुद से ही, पिताजी को पता ही नहीं था। अचानक से पिताजी को पता चलो अभय मैंने सुना है तुम कोई दूसरी लड़की ढूंढ रहे। उस समय 2 शादियां अलाउड थी। बोले हाँ पिताजी। बोले क्यों? बोले पहले वाली सुंदर नहीं थी। इनके पिताजी ने कहा लेकिन आने वाले समय में जब तुम संन्यास लेके धर्म का प्रचार करने के लिए जाओगे तो इसका त्याग करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, इसलिए दूसरी मत ढूंढो, सुंदर आ जाएगी तो त्याग करना कठिन हो जाएगा। तो उनके पिताजी का वो विजन था और प्रभुपा जी ने उस विजन को एक्सेप्ट कर लिया, क्यों जानते थे ऐसा होने वाला है। बोले ठीक है फिर मैं कैंसिल करता हूँ। इतने आज्ञाकारी थे अपने पिताजी के प्रभुपा जी। कई बार ऐसा हॉरोस्कोप देखा जाता है लेकिन जनरली जिनके साथ अच्छा होने वाला है उनको देख करके उनका नामकरण करना एक शोभा देता है, लेकिन जिनके अंदर घटिया ही घटिया लक्षण उनको पहले से जानने से क्या लाभ। आजकल की जनरेशन जो कि होते ही हैं, हेरिटेज में आते ही हैं ऐसे जो दारू की बोतल के कारण पैदा होते हैं, उनका भविष्य कैसा होने वाला है? वो भविष्य में ऐसे ही 9-2-11 रहने वाले, 9-2-11 ही ठीक है, 12-13 जान के क्या फायदा, फिर उल्टी गिनती में ज्यादा नीचे क्यों जाना। नौ दो ग्यारह हम हैं, माँ बाप हैं, तो नौ दो ग्यारह संतान होगी, वो बारह तेरह होगी, तो बारह तेरह को पहले हॉरोस्कोप दिखा के क्या जानने से फायदा। श्रेष्ठ लोगों को अधिकार है कि उनको हॉरोस्कोप देख करके ज्ञान ग्रहण करके भविष्य के लिए दूसरों के लिए क्या अच्छा होने वाला है, हमारे जीवन में क्या बुरा होने वाला है, उससे हम कैसे बचे, वो शोभा देता है। हमारे लिए तो एकमात्र उपाय है कि हम अपने कर्मों को काटें कैसे, वो प्रोसेस हम अपना लें। तो इन्होंने बताया तो इनको बड़ा शौक लगा और ये तैयार हो गए। तो चोरों ने देखा, अरे पहली बार कोई व्यक्ति देखा जो मरने के लिए स्वयं तैयार है। तो चोरों ने पूछा, मरने से पहले जब तो हम तुम्हें मारने जा रहे थे, स्नान से पहले तो तुम्हारी अलग स्थिति थी, और तुम यमुना से स्नान करके बाहर आए तो तुम्हारी अलग स्थिति, तेरा डर ही चला गया बिल्कुल। तुम अंदर कुछ बड़बड़ा रहे थे किसी के साथ, ऐसा लगता है, ऐसा कैसे हुआ, किससे बात कर रहे थे तुम बताओ? बोले मैं मेरे गुरुजी से बात कर रहा था। तो तुम तुम्हारे गुरुजी से क्या बात कर रहे थे पहले वो बताओ। बोले नहीं नहीं वो छोड़ो यार, मारो मेरे को जल्दी से तुम पहले। बोले नहीं नहीं आप पहले ये बात बताओ, हुई क्या थी तुम्हारे अंदर बातचीत, हमने तो गुरुजी को देखा नहीं तुम्हारे। बोले नहीं वो अलक्षित रूप से प्रकट हुए थे और बोले ये बात हुई थी, असलियत में तो मैंने तुम्हें पहले मार चुका है एक एक व्यक्ति को। अब आप सब लोग भगवान की दया से इकट्ठे हो गए हो, इसलिए जब तक इकट्ठे हो तब तक जल्दी से मार दो तो सबको हत्या का फल मिल जाएगा, इसलिए मुझे मरना पड़ रहा है। तब तो ये चोर आश्चर्य में डूब गए, ऐसा है क्या, हमने तो तुम्हारी तरह न जाने कितनों की हत्या की है, और तुम्हारे भक्ति मार्ग में आ जाने से 11 को 1 में शिफ्ट किया जा सकता है, तो फिर हमें भी कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अरे तुम सॉल्यूशन जो ढूंढना ढूंढ लेना, पहले मेरे को मारो और हिसाब खत्म करो यार। बोले नहीं नहीं पहले तू तेरे गुरु से मिला हमें तब मारेंगे। उसने एड्रेस दे दिया, जाके मिल लो। बोल नहीं 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 तुम लेके चल, वहां इंट्रोड्यूस कराने वाला कोई चाहिए तुम शिष्य उनका। लेके गए, वार्ता कराया, शरण में चले गए, गुरुजी ने दीक्षा दे दी इनको। कई बार ज्ञान का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। भागवत में ऐसी घटना घटी, महाराज चित्र के तो करोड़ों रानियां उनकी थी, अपार ऐश्वर्य, सारे संसार के राजा, लेकिन एक भी लड़का नहीं। अंगिरा ऋषि उनके पास आए, बोले मैंने दान धर्म यज्ञ आदि सब कुछ कर लिया, कोई संतान ही नहीं हो रही। और देखो जिसके संतान नहीं होती ना गृहस्थ जीवन में, वो अपने आप को बड़ा अभागा समझता है, सोचता पता नहीं क्या मैंने कुछ पाया ही नहीं जैसे, और जिनकी हो जाती वो भी बड़ा अभागा समझते हैं, ऐसा हुआ, इससे अच्छा तो नहीं होता तो अच्छा था, बहुत बड़ा संकट हो जाता है। तो इन्होंने अंगिरा ऋषि को सब कुछ दिखाया, अंगिरा ऋषि ने कहा 7 जन्मों तक संतान नहीं है तुम्हारे नसीब में, तो इसलिए प्रयास छोड़ दो, ये पागल हो गए। बोले ठीक है मैं तुम्हें अपनी भक्ति से तुम्हें संतान दूंगा, लेकिन इसका नाम हर्ष और शोक रखना, हर्ष शोक, इसका नाम क्या रखोगे, हर्ष शोक। पैदा होने पर तुम्हें हर्ष भी होगा, तुम्हें तो अभी इसकी उतावला है ना कि कैसे भी होना चाहिए बस, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा इसलिए उस समय ये शोक भी देगा, इसलिए इसका नाम क्या रखना, हर्ष शोक। करोड़ों रानियों में से एक रानी से संतान पैदा हुई उनकी दया से, और लड़का पैदा हुआ उसका नाम हर्ष शोक रखा। राजा एकदम पागल हो गया खुशी के मारे, अब तो उस रानी से बहुत अधिक प्रेम करने लग गया। अन्य रानियां चिड़ने लग गई, अन्य रानियों ने खेलते खेलते जहर दे दिया उसको, मर गया। मरते ही वो इतना पछाड़ खा करके गिर पड़े महाराज चित्र के, तो एकदम पागल हो गए पूरी तरह से। हर व्यक्ति आकर के समझा रहा है, स्वयं इनके पागल अवस्था को देख करके अंगिरा ऋषि जब आए नारद जी के साथ, उन्होंने खूब प्रयास किया, नारद जी ने लेक्चर दिया, नारद जी का लेक्चर भी फेल हो गया। इतना कठिन होता है ना नारद जी का लेक्चर, कभी फेल जाए ऐसा होता नहीं प्राय। नारद जी जिसको लेक्चर दें और वो पक्का भक्त ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन इतना ये शोक में डूब गया कि नारद जी का लेक्चर ही फेल हो गया, और बार बार रोए जा रहा है, होश ही नहीं उसको, लड़की की लाश को देख करके। नारद जी ने अपनी दिव्य शक्ति से उस बच्चे की आत्मा को वापस लाया, उसको जिंदा कराया और बोला, देख तेरे पिताजी कितनी पागल अवस्था में पड़े हुए, तुम चला गया इनको छोड़ करके, पिताजी के गले लगो जा करके, शांति दो इनको, आनंद प्रदान करो, खेलो इनके साथ। खड़ा हुआ, कौन पिताजी? अरे ये पिताजी महाराज चित्र के। तो बोले ये कौन से पिताजी? पांचवें नंबर के, दसवें नंबर के, हजारवें नंबर के, दस लाखवें नंबर के, करोड़ या एक खरब या खरब, कौन से जीवन के पिताजी हैं? कौन से वाले पिताजी? पिताजी की एक लाइन हो तो बताए। अनंत काल से सृष्टि चली आ रही है, अनंत काल से न जाने कितने माता पिताओं के यहां मैंने जन्म लिया। गधे में भी मैंने पिता बनाए, सुअर में भी मैंने पिता बनाए, न जाने कहां कहां मैंने माता पिता बनाए। बहुत सारे लोगों ने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं, तो फिर सब माता पिता की आज्ञा का पालन करके दिखाओ जरा कितनी लंबी लिस्ट है। कई बार यमलोक में जाके यमदूत पूछेंगे, तुमने भक्ति नहीं किया, भगवान की शरण नहीं लिया? बोले माता पिता ने मना कर दिया। तो बोले कौन से माता पिता? यहाँ करोड़ माता पिताओं की लाइन लगा देंगे यमराज, कौन से वाले माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं? वो सब यहाँ नरक में डंडे खा रहे हैं, तुम भी अब उनके साथ खाओ। तब तो यहाँ पर बोले कौन से माता पिता? अब आपकी संतानी आपके मुंह पर ऐसा कहे, आपका सारा अफेक्शन सारा प्रेम झटके खाएगा कि नहीं? को बड़ा शौक लगा, ये कौन से माता पिता कह रहा है मेरे को? बोले माता पिता, अरे मैं तो इनका दुश्मन था, जानबूझ करके कष्ट देने के लिए आया था इनको कि मैं कुछ समय पैदा हो जाऊंगा आपके पास, आपकी बहुत अटैचमेंट मेरे साथ हो जाएगी, फिर मैं अटैचमेंट तोड़ के चला चल पड़ूंगा अचानक, फिर आप रोते रहना जीवन भर, थोड़े दिन की आसक्ति के साथ जीवन भर रुलाऊंगा मैं आपको, मैं आपका पुत्र कब था, मैं तो दुश्मन हूं राजा। ऐसा सुनते ही राजा झकझोर, बाप रे बाप, ये मेरा दुश्मन? तब तो अकल आ गई उनको, उस बच्चे का प्रवचन काम कर गया और बच्चा छोड़ के चला गया शरीर को। तुरंत नारद जी से दीक्षा लिया, मंत्र जप करने का आश्रय लिया और भगवान शंकरसन के बलराम जी के महान भक्त बने। तो कई बार जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है भूतकाल का कि वास्तव में ऐसा था, तब जाकर के आंखें खुल जाती, तब आदमी कई बार तथाकथित दुख से बाहर आ जाता है। लेकिन हमारे लिए गंभीर मुद्दा ये नहीं है कि हम अपने व्यक्तिगत कार्यों के बारे में, पिछले जन्मों के बारे में जा जा करके हॉरोस्कोप दिखाते फिरें, क्योंकि आज के समय में ज्योतिष विद्या को जानने वाले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अच्छी तरह जानने वाले बहुत कम हैं। इसलिए आपसे पैसे भी ऐंठ लिए जाएंगे और आपको कुछ ठीक से बताया भी नहीं जाएगा, और जानने के पश्चात भी आपको केवल दुख मिनिमाइज हो सकता है, घटना घटके तो रहेगी। दूसरा, उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? बेस्ट सॉल्यूशन है आप उस कर्म की श्रृंखला को ही काट डालो। इसलिए जब इन चोरों ने इन गुरुजी से ज्ञान प्राप्त किया तो इन्होंने शिष्य बन गए, इनकी दीक्षा ले ली, भक्त बन गए। अब बाहर निकले, बोले मारो मेरे को। बोले हम नहीं मारेंगे भाई, पहले ही लाइन लंबी है। बोले प्रश्न उठता फिर उस कर्म का रिएक्शन कहां चला गया जो इक्वल एंड अपोजिट मात्रा में आना ही था, इट्स ए लॉ। बोले भगवान कि इस कार्य को लेकर के कि मेरे को कम से कम 11 लोगों को इकट्ठा किया तो एक बार तो मरना चाहिए ना। तो वापस गुरु जी के पास गए, बोले तुम मार ही नहीं रहे आप? बोले जब तुमने मृत्यु को मेरे ज्ञान के द्वारा कृपा मान लिया और सोचा ये तो भगवान की बहुत बड़ी दया है कि 11 बार मरने के बजाय मुझे कितने बार मारा जा रहा है, एक बार, ये क्या है? दया है, मेरे कर्म से तो मुझे 11 बार मरना चाहिए और उसमें भगवान मेरे ऊपर अत्याचार नहीं कर रहे, वो तो मेरा ही कर्म कारण है, भगवान कारण नहीं है। भगवान तो जज है, भगवान तो जज है, जिसने जैसा किया है उसको वैसा जज दे रहे। तो भगवान किसी को, मान लो किसी जज ने किसी व्यक्ति को धन वापस दे दिया लूटा हुआ रिवार्ड के रूप में, तो जज ने पक्षपात किया क्या? और चोरों को सजाए कैद दे दी उम्र भर के लिए, तो जज ने पार्शियलिटी किया? इसमें जज सही है या गलत है? सही है, जज न्यूट्रल है, वो अपनी कार्य को कर रहा है बखूबी से, उसको ना उससे प्रेम है ना उससे दुश्मनी है, लॉ को मेंटेन कर रहा है वो। सिमिलरली भगवान ने क्या किया? नियम के अनुसार लॉ को मेंटेन करना चाहिए था, दैट इज द लॉ ऑफ कर्मा, दैट इज द लॉ ऑफ कर्मा। लेकिन लोग जानते ही नहीं इस बात को, लोग सोचते हैं हाँ मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैं तो इतना अच्छा हूं, और उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, वो तो इतना बुरा है। लेकिन इस लॉ को नहीं जानते, क्योंकि आत्मा मात्र कॉन्स्टेंट है, आत्मा चेंज नहीं होती। आत्मा वही है जिसने पिछले शरीरों में उसने काम किया, वही काम उसके आने वाले शरीर में आ रहा है। जैसे वी कैन चेंज द ड्रेस बट द पर्सन इज नॉट गेटिंग चेंज। मान लो पैंट शर्ट में मैंने किसी का मर्डर किया और अभी धोती कुर्ते में प्रवचन दे रहा हूं, पुलिस आ जाए बोले चलो आपको अरेस्ट किया जाता है, मैं कहूं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बोले नहीं आपने पैंट शर्ट में किया था, अरे पैंट शर्ट में किया था वो तो अलग था, अब तो मैं धोती कुर्ते में आ गया, बोले नहीं आदमी वही है, करने वाला ना पैंट शर्ट था ना धोती कुर्ता है, पैंट शर्ट के अंदर और धोती कुर्ते के अंदर व्यक्ति वही था, इसलिए आपको पकड़ा जाए। सिमिलरली संसार में प्रत्येक कर्म को करने के कारण दंड हमें अवश्य दिया जाता है, वो पक करके जब आएगा तो सामने आ ही जाएगा, सामने आएगा ही आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि करने वाली आत्मा है शरीर नहीं, आत्मा कभी बदलती नहीं है, आत्मा में चेंज नहीं होता, भगवान में चेंज नहीं होता। लेकिन जज के हाथ में अधिकार है, कई बार जब सृष्टि भगवान की है, इस सृष्टि में भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते, लेकिन जब कोई उनकी शरण लेता है तब भगवान पक्षपात कर लेते हैं, क्योंकि उसका उसके साथ नाता जुड़ गया और वो गलत नहीं। जैसे मान लो स्कूल से 10 बच्चे बाहर निकले अचानक से और एक माँ बच्चों को रिसीव करने के लिए आ रही, तो 10 बाहर निकले, 8 नीचे गिर गए, उनमें उस माँ का बच्चा भी है, तो उस माँ ने अपने बच्चे को पहले उठाया, दूसरों को बाद में उठाया, तो माँ ने गलती की क्या? पार्शियलिटी की कि नहीं? अपने बच्चे को उठा के पार्शियलिटी तो की, लेकिन वो दोषपूर्ण नहीं है, नेचुरल है। ऐसे ही जब इन चोरों के न मारे जाने पर वो महात्मा जी ने पूछा कि कम से कम मेरे को फिर मेरे कर्म का दंड तो मिलना चाहिए, बोले नहीं, भगवान की उस दया को जिसमें कि आपकी शरणागति के कारण भगवान ने आपके कर्मों को मिनिमाइज करके केवल एक ही मृत्यु के रूप में दिया और वो दंड था, आपने उस दंड को भी क्या मान लिया? कृपा मान लिया, तब आपका वो दंड भी क्षमा कर दिया है। इसलिए अब आपको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। इसलिए जब हम जीवन में किसी भी परिस्थिति को कृपा मानते हैं, क्या मानते हैं? कृपा मानते हैं, तब हम भगवान के सच्चे शरणागत होते हैं और फिर हमारे जीवन में सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। बहुत सारे लोग भगवान की शरणागति को छोड़ के संसार में कुछ पुण्य कर्म करने की चेष्टा करते हैं और सोचते हैं हमारे पाप कर्म करने से जो दंड मिलने वाला है वो इन पुण्य कर्मों को करने से वो कट जाएंगे आपस में। आपस में कटते नहीं है। कोई सोचे मैंने इस सब्जेक्ट में बहुत तैयारी नहीं की, फेल हो गया, तो मैं दूसरे सब्जेक्ट में बहुत मेहनत करता हूं तो उसमें भी मार्क्स मेरे जुड़ जाएंगे, इस सब्जेक्ट में मार्क्स उसमें नहीं जुड़ेंगे, दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। इसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, उसमें कम मार्क्स ही मिलेंगे। ऐसे ही पुण्य और पाप कभी आपस में कैंसल नहीं होते। पुण्य का रिवार्ड अलग मिलेगा, पाप का रिवार्ड अलग मिलेगा। लेकिन जब हम भगवान की शरणागति को पकड़ते हैं, भगवान के भक्त बनते हैं, भगवान के भक्त मतलब गुरु जी का आश्रय लेते हैं, भक्तों का आश्रय लेते हैं, उनके आज्ञा अनुसार जब जीवन को जीते हैं तब हम भक्त कहलाते हैं। और जब हम भक्त बन जाते हैं तो संसार का ये जो काल चक्र है, जो हमें चेंजेस देकर के मजबूर कर रहा है दुखों को सहन करने के लिए, दूसरे शब्दों में संसार में हमारे खुद के जो कर्म चक्र हैं, जिसके कारण हम कम या ज्यादा मात्रा में अलग अलग लोग अलग अलग दुख या सुख का अनुभव कर रहे हैं, ये सारे दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो प्रिंसिपल दो निकले, एक तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारे दुख में कमी आ जाती, इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल क्या निकला, हम कितने भी ज्ञानी बन जाएं तो भी दुनिया के दुखों का अंत नहीं कर सकते, जब तक कि हम समय के अंतर्गत हैं, समय के कारण ये दुख तो आएगा ही आएगा। इसलिए क्या करें फिर, इस समय से बाहर जाने का शक्ति केवल भगवान श्री कृष्ण के पास है, वही हमें इस काल चक्र से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए संसार में हॉरोस्कोप दिखा करके या संसार में अन्य चीजों को जान करके या हाथ दिखा करके या भूत वर्तमान भविष्य का जान करके हम शाश्वत दुखों की निवृत्ति नहीं कर सकते, हमेशा के लिए इस साइकिल को बंद नहीं कर सकते। इस साइकिल को हमें बंद करना है तो हमें अज्ञानता, तो क्या फिर हम अज्ञानी रहे, बोले नहीं, भगवत ज्ञान ग्रहण करो। कौन सा ज्ञान ग्रहण करो, भगवत ज्ञान। आपके ज्योतिष आदि संसार के समस्त साइंसेस से ज्यादा कहीं श्रेष्ठ है भक्ति का ज्ञान। जैसे कोई वैद्य के पास भाग रहा है, कोई ज्योतिष के पास भाग रहा है, कोई तांत्रिक के पास भाग रहा है, कोई किसी और के पास भाग रहा है, संसार में दुनिया भर के लोगों के पास, सब लोग दुनिया भर के उपाय करते हुए संसार के दुखों का अंत करने की चेष्टा करते हैं, और प्रायः संसार में ये सब चीजें थी और ये सब चीजें सेल्फलेस सर्विस के रूप में की जाती थी। पहले कोई वैद्य किसी अपनी दवाई का या औषधीकरण करने का पैसा नहीं लेता था, हाथ देखने का कोई पैसा नहीं लेता था, कोई किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का पैसा नहीं लेता था, ये ज्ञान या ये सुविधाएं सब फ्री में दी जाती थी। आज यही सब चीजें क्या बन गई, बिजनेस। तो जब बिजनेस बन गया तो आपको तो ठगेगा कि नहीं ठगेगा कितनी संभावना है कि आपके साथ वो सत्य सत्य बताएगा, आपको लूट लेगा, सब ठीक होगा सब ठीक होगा सब ठीक होगा, बाद में ठीक नहीं होगा, बोले आपको जो करना है कर लो, मैंने तो प्रयास किया नहीं हुआ तो मैं क्या करूं आपसे सब सरेंडर भी कराएगा, अपने आपको कहेगा आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक हो जाएंगे, इतना पैसा जमा कर दो और यहां हस्ताक्षर कर दो, मर जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। और देखो हम इन सब चीजों में कितना सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन सभी कारणों के कारण, कॉज ऑफ द ऑल कॉजेज इज द सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ कृष्ण, गॉड हेड कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम, वो सभी कारणों के कारण है, वो काल के भी कारण है, काल भी उनसे भयभीत रहता है। इसलिए हमें बिना किसी इधर उधर पचड़े में पड़े हुए इस मनुष्य शरीर को शीघ्र अति शीघ्र इस मूल कॉज को समझते हुए, संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब कृष्ण की अध्यक्षता में हो रहा है, कृष्ण सब चीजों के कारण है, इसलिए हम कृष्ण के द्वारा सब कुछ कर सकते। हमें क्या करना है, कृष्ण का आश्रय लेना है। तो संसार में जो हम और उसको नहीं दिखाने के कारण दुख आएगा, बोले उसका क्या करें, बोले सहो, उसको सहन करना सीखो। हाँ, इस श्लोक में स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को, ये यम ही व्यथयंत एते, जो व्यक्ति व्यथित नहीं होता, यम ही न व्यथयंत एते, जो व्यथित नहीं होता, पुरुषम पुरुष ऋषभ, अरे पुरुष जो सभी पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, हे अर्जुन जो किसी भी विपत्ति से व्यथित नहीं होता और क्या करता है, सम दुख सुखम, दुख और सुख को समान समझता है, धीरम, वो व्यक्ति धीर है। बोले उसको क्या मिलेगा, सो अमृत तत्वाय कल्पते, वो अमर हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा, वो इस काल चक्र से मुक्त हो जाएगा। अर्थात जब तक हम सुख दुख के पीछे रोते रहते हैं, हाय हाय में तो लुट गया, हाय हाय में तो बहुत आनंद में आ गया, अब तो तब तक हम भगवान के शरणागत नहीं माने जाते। भगवान के शरणागत कोई होता है, वो जानता है कि चेंज इज कॉन्स्टेंट इन दिस मैटर, नथिंग इज कॉन्स्टेंट। So it is better to take wholeheartedly the shelter of Krishna. He can bring out from the so-called pain and pleasure which everybody is compelled to face in this material. इसका कोई solution नहीं है इसके अलावा। इसलिए हिरण्यकश्यपु की तरह मुक्ति पाने के लिए, अमर अमर होने के लिए तपस्या करना बेवकूफी है, मरना ही पड़ेगा लास्ट में। इसलिए आप चाहे रिवाइटल खाओ, चाहे योगा करो, चाहे हील एंड हेल्दी कुछ भी करो, आप चाहे रोज काजू बादाम पिस्ता खाओ, आप कुछ भी कर लो, संसार में आप सदा रहने वाले नहीं। हम सभी मरना नहीं चाहते, लेकिन ये आएगा, इससे बचना है। जीते जी आप अमर हो सकते हो। महाराज ध्रुव जब इस संसार से गए तो स्वयं काल आया, और काल आया तो काल ने महाराज ध्रुव के सामने प्रार्थना किया, आप जा तो रहे हो संसार से, आपके लिए वैकुंठ से विमान आ गया है, आप एक काम कीजिए, मेरे सर को आप अब सीढ़ी बना लीजिए, एक विमान में चढ़ने के लिए स्टेप्स होते हैं, तो आप मेरे सर को एक सीढ़ी बना के, क्योंकि संसार में काल का स्पर्श तो होना चाहिए, एक संसार का नियम है, लेकिन संसार में जो लोग मरते हैं उनके सर पे काल चढ़ता है, और जब कोई भक्त बन जाता है, भक्त काल के सर पे चढ़ता है, भक्त काल को जीत लेता है। और महाराज ध्रुव ने भगवान के इस विधान को मानते हुए उन्होंने क्या किया, क्या किया, काल के सर पे पैर रखा और चल पड़े। तो हमें क्या करना है, भगवान के ऊपर निर्भर रहना है, भगवान जैसे रखें वैसे ठीक। तो फिर क्या संसार में हम कुछ काम धंधा छोड़ दें, सब प्रयास छोड़ दें अपने काम करने, प्रयास भी करना है, क्या प्रयास करना है। दो बच्चे होते हैं, एक बंदर का बच्चा, एक बिल्ली का बच्चा। बंदर का बच्चा क्या प्रयास करता है, रात दिन बंदरिया को पकड़ने का प्रयास करता है, कई बार नहीं ध्यान रहता तो बंदरिया उसको पकड़ती है, उसको इधर आ, पास में खींचती है, फिर वो खुद पकड़ लेता है। तो उसका एकमात्र प्रयास क्या है, अपनी मां को पकड़ने का प्रयास करता। और बिल्ली का बच्चा, वो ऐसा प्रयास नहीं करता, बिल्ली का बच्चे को बिल्ली अपने मुंह में लेती है, जहां ले जाती है वो चला जाता। इसलिए भगवान का भक्त एकमात्र प्रयास यही रहता है, और ऐसा करने के बाद उसको जिस परिस्थिति में डाला जाए, जिस परिस्थिति में उसको रखा जाए, वो बिल्ली का बच्चा समझ करके कि भगवान मेरे को ऐसी परिस्थिति में रख रहे हैं, कोई बात नहीं मैं ऐसे ही रहूंगा ठीक है, इसको कहते हैं सरेंडर। जब भगवान को सरेंडर दिए सब उनके हाथ में, वो जैसा चाहे वैसे रखे। हम हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठ सकते, हमें काम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। क्या काम करें? सिर्फ आज्ञा का पालन करें, सीधे बंदर ना बने कि कभी इस डाल पे जाकर के हिलाया अच्छी तरह से, फिर कूद के दूसरी डाल पे हिलाया, क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। इसलिए जो मनुष्य शरीर मिला है, ये हमें मनुष्य शरीर जो विशेष रूप से मिला, ये हमें भगवान की शरणागति के लिए मिला है। शरणागति के लिए यत्न करना पड़ेगा, अपने आप शरण में है हम ऐसी घोषणा नहीं कर सकते। अर्थात हम आज्ञा पालन कितना कर रहे हैं, हमारे प्रयास स्वरूप ये हमारी शरणागति है, और हमें जैसे भगवान रखें उसमें ही हम प्रसन्न हैं, उसको हम सहन कर रहे हैं। अगर अच्छी कंडीशन है तो भी हमारे लिए सहन करना है, बुरी कंडीशन है तो भी सहन करना सीखना चाहिए। कोई भक्त बन के ये घोषणा नहीं कर सकता मेरे लिए तो भगवान हर समय 24 घंटे दरवाजे पे खड़े रहना चाहिए, हर आज्ञा का पालन करने के लिए, हर सुविधा देने के लिए। स्वयं भगवान के माता पिता देवकी वसुदेव को जेल के कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं भाई, तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि संसार के हमें कष्ट नहीं मिलेंगे भक्त बनने पर। हाँ, भक्त बन जाने पर आप सारे कष्टों से छूट करके एक दिन वापस जरूर चले जाओगे, और अगर आप सारे कष्टों को कृपा मान लोगे तो फिर वैसे भी तुम्हें कष्ट सताने वाले नहीं लेकिन इस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है, ये चुटकी प्रोसेस नहीं है। हाँ, इस तक पहुंचने के लिए बहुत माला घिसनी पड़ेगी आपको, जो माला दी जाती है पहले तो माला लेते ही नहीं, कई बार आने के पश्चात भी माला पकड़ते ही नहीं जीवन में। जो लोग माला पकड़ लेते हैं उनको माला घिसनी पड़ेगी बहुत, माला सफेद से पहले काली होगी, काली से फिर दो चार बार टूटेगी भी, जब करते करते धागा कमजोर पड़ेगा, उसके बाद दो चार मन के घिस घिस के मन के भी टूटेंगे, फिर आपको रिपेयर कराना पड़ेगा उसको, फिर बहुत काली हो जाएगी, तब जाकर के आपका हृदय साफ होगा। आपका काला हृदय कैसा होगा? साफ होगा, तब चमचमाएगा हृदय हमारा, तब हमें भगवत अनुभूति होगी, और वो अनुभूति बड़ी अद्भुत होगी। उस अवस्था में हम जो सोचेंगे भगवान सब कुछ करेंगे। प्रभुपाद जी के लिए किया भगवान, प्रभुपाद जी जब विदेश जा रहे थे दो बार इनको हार्ट अटैक आया, लेकिन फिर भी इन्होंने सहन किया, ठीक है कृष्ण आपकी जैसी इच्छा। सोच रहे थे तीसरा हार्ट अटैक आ जाएगा तो मैं तो मर जाऊंगा, फिर मेरे गुरुजी का आदेश का कैसे पालन करूंगा। बोले कोई बात नहीं, तीसरा हार्ट अटैक आने से पहले समुद्र में ही भगवान प्रकट होकर के इनको अनुभव करा रहे। बोले चिंता मत करो, तुम्हारे इस जहाज को मैं चला रहा हूं और कोई हार्ट अटैक नहीं आएगा, आप कार्य करो। तो उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और भगवान के ऊपर निर्भर रह करके किया। हम आज्ञा का पालन करें और निर्भर बने, उसकी शुरुआत इस ज्ञान से होती है। इसलिए भगवतीता भागवत जैसे ज्ञान को हमें रोज अनुशीलन करना चाहिए, रोज अनुशीलन करना चाहिए। इसलिए भागवत और भगवतीता की क्लास इस्कॉन में रोज होती है। कुछ लोग आते हैं और सोचते हैं जैसे गीता क्लास चालू होने लगती, सोचते जल्दी से भागो यहां से, नहीं तो प्रभु जी पकड़ के बिठा देंगे। और ऐसा लगता है कि प्रभु जी पकड़ के बिठाएगा तो जैसे कितना बड़ा अत्याचार कर रहा है। ये अत्याचार नहीं है, संसार में आप काल के अत्याचार से, प्रकृति के अत्याचार से, स्वयं अपने कर्मों के अत्याचार से, स्वयं के अत्याचार से इन सब से बच पाओगे। और इन सब अत्याचारों के कारण मुख्य रूप से हम स्वयं हैं, हमारी जो विलिंग स्वयं जो स्वतंत्र इच्छा है ना, हम चाहेंगे तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, ये जो स्वतंत्र इच्छा यही बेड़ा गर्क कर देती। इसलिए हमें स्वतंत्र इच्छा, जैसे एक बालक स्वतंत्र इच्छा के कारण पढ़ना अपने लिए जरूरी नहीं समझता, लेकिन वही नहीं पढ़ना उसके लिए दुख का कारण बनता है। वही जब टीचर्स के और परिवार के पिताजनों के आधार पर अगर वो आज्ञा पालन करते हुए पढ़ाई को जरूरी समझ लेता है, तो उसी परतंत्रता से वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है और फिर आगे चल करके आनंद का अनुभव करता है। ऐसे ही हमें इस भक्ति को अपने जीवन का एक अंग अवश्य बनाना चाहिए। उसके लिए प्रमुख रूप से तीन कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है तो सत्संग। सबसे पहला कार्य क्या है? सत्संग। बिना किसी कारण के हमें येन किन प्रकार, जैसे हम डॉक्टर के पास भागते हैं, जैसे हम हॉरोस्कोपर के पास जाते हैं, जैसे हम तांत्रिक के पास भागते हैं, जैसे हम अन्य संसार के बड़े बड़े नेताओं के पास भागते हैं, ऐसे ही तीव्रता से सबसे पहले हमें सत्संग में भागना सीखना चाहिए। किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहिए। दूसरा कार्य है सत्संग के बाद हमें येन केन प्रकारेन पुस्तकों का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि सत्संग रोज नहीं कर सकते लेकिन पुस्तक रोज पढ़ सकते, इसलिए प्रभुपाद जी के इन ग्रंथों का आश्रय लेना चाहिए। तीसरा है हमें रोज भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इस युग का धर्म है, इस युग की शरणागति का एकमात्र उपाय है भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना। इसलिए नित्य प्रति सभी भक्तों ने संख्या पूर्वक नाम का आश्रय लेना चाहिए। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है, आप रेगुलरली इसी प्रकार से आते रहिए, यहां से पुस्तकें लेकर के जाइए, इन पुस्तकों को पढ़िए, और यहाँ से माला लेकर के जाइए, जिसके पास माला नहीं है जो करते हैं और अच्छी तरह से कीजिए, आज ही लेकर के जाइए। ये मत सोचिए कि मैं अगली बार आएंगे तब सोचेंगे, पता नहीं उस समय तक हम संसार चक्र में न जाने कितने चेंजेस को प्राप्त हो जाएंगे, हमारा माइंड ही चेंज हो जाएगा। इसलिए इन बातों को बहुत गंभीरता से लीजिए। विशेष रूप से हमने कुछ बातें बताई, शुरुआत हमने चेंज से किया, दुनिया में चेंज निश्चित है, इसको बदला नहीं जा सकता, कुछ बदले या ना बदले लेकिन चेंज निश्चित है, उसको नहीं बदल सकते, और ये चेंज ही दुख रूपा है जिसके प्रति हम सब लोग रेजिस्ट करने का प्रयास करते हैं लेकिन कर नहीं सकते। हम भी उस फोर्स के अंतर्गत हैं जो निरंतर चेंज को बनाए रखता है। वो फोर्स क्या है? काल। वो फोर्स क्या है? काल। काल के कारण सब लोग कांस्टेंट चेंज को मजबूरन फेस करना होगा, और उस चेंज में वैरायटीज हैं, कोई ज्यादा दुखी है कोई कम दुखी है, वो वैरायटीज के कारण हमारे स्वयं के कर्म हैं। इसलिए हमारे कर्मों को भी हम जान करके भी इन दुखों को नहीं मिटा सकते कि हमने किस समय में क्या कर्म किया था और उसका परिणाम क्या आने वाला है। जान जाने से कर्म का दुख कम तो हो जाता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता। अगर हम उसे खत्म करना चाहते हैं तो काल चक्र को और कर्म चक्र को, दोनों को ही हम खत्म कर सकते हैं केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण लेकर के, और इस शरण से फायदा ये होगा हम भगवान के धाम को चले जाएंगे जो इस सृष्टि से परे है, जहां काल का अधिकार नहीं है। इवन इस सृष्टि में भी भक्ति का इतना सामर्थ्य है, शरणागति की इतनी सामर्थ्य है कि हम लोग काल को यहां रहते हुए भी जीत सकते हैं, और भक्त अपनी इच्छा अनुसार संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो हमें दुनिया में किसी की शेल्टर लेने के बजाय, क्योंकि दुनिया में सब शेल्टर बिजनेस एटीट्यूड है, सब लोग उसमें से अपना अपना फायदा ढूंढने का चेष्टा कर, इवन भक्ति भी अगर बिजनेस कहीं दिखाई दे वहां भी मत लो। जैसे आपको मैं कहूं भैया मैं ये आपको हाँ ये क्लास लूंगा और इसका 500 रुपया लूंगा आपसे पर क्लास, वो उचित नहीं है। वो व्यक्ति को भी कोई लेना देना नहीं है आपसे, वो आपको क्या दे रहा है, वो तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके 500 रुपया लेट के चला जाए। इसलिए ये शिक्षा हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है और वही हमारे सबसे अच्छे वेल विशर हो। इसलिए प्रभुपाद जी ने शिक्षा को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमें कृतज्ञ होना चाहिए। हमें कृतज्ञ होना चाहिए, हमें स्वयं से ही सेवा करना सीखना चाहिए, ऋणी अनुभव करना चाहिए, और ऋणी अनुभव करते हुए शरणागत हो जाना चाहिए पूरी तरह से, क्योंकि हमें बचाने के लिए आए हैं, हम बचने के लिए आए हैं। जब हम शरणागत होते हैं तो फिर सामने वाले के लिए ही जीवन जीते हैं, हमारा सब कुछ सामने वाले के लिए ही होता है। प्रभुपाद जी ने ऐसी शिक्षा देके दिखाया और सारे संसार में बहुत सारे लोगों को ऐसा बनाया जिन्होंने अपना सब कुछ प्रभुपाद जी को सौंप दिया, और प्रभुपा जी ने उस चीजों को लेकर के अपने परिवारिक जनों में नहीं बांटा। प्रभुपा जी ने सब कुछ आने वाले समय में प्रचार कार्य के लिए निमित्त किया और सारे संसार को प्रचार प्रसार का ये आंदोलन दे करके हम जैसे अभागी लोगों को भी कृतार्थ किया, ऋणी बनाया और हमें एक मौका दिया। अब हमारे पास मौका है, हम चाहें तो इस मौके को हमेशा के लिए अंगीकार कर सकते हैं, नहीं तो हम अभागी ही बने रह सकते हैं। क्षमा कीजिए, समय बहुत ज्यादा हो गया है। आप सबका धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आशा करते हैं आप इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे, अगली बार जब आएंगे खड़े कर करके पूछेंगे हम, हमने लास्ट क्लास में क्या बताया था। और आप नोटबुक में से भी देख के बता सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं, ओपन बुक टेस्ट होगा, ओपन नोटबुक टेस्ट, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, अगली बार समय से। जो लोग लेट आएंगे उनसे बाद में पूछेंगे क्लास के बाद। प्रश्न उठाओ आप बताएं, आपका तो पहले ही उठ गया था, क्लियर हो गया था ना। तो प्राय क्लियर हो ही जाते हैं, इसलिए हमने कहा था थोड़ा धैर्य धारण करो। तो हम लोगों के बहुत सारे प्रश्न भक्ति में जुड़ते समय आते हैं, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ये क्या है, वो क्या है, लेकिन थोड़ा धैर्य धारण करना चाहिए, क्लासेस अच्छी तरह से सुनना चाहिए, हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाते। यस यस प्रभु, कोई प्रश्न है कि नहीं? यस हाँ। देखो द्रोणाचार्य गुरु हैं, लेकिन वो किस स्तर के गुरु हैं? उन्होंने उनको विशेष रूप से सैन्य विज्ञान सिखाया, धनुर्विद्या का ज्ञान दिया, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। लेकिन अगर वो जो गुरु शास्त्र बताता है उस स्तर के गुरु होने का अर्थ है सारी समस्याओं का समाधान करने की सामर्थ्य रखना। अगर वो वैसे होते तो भगवान कृष्ण को वो पुनः गुरु क्यों बनाते? तो भगवान कृष्ण को उन्होंने फिर से गुरु बनाया, निवेदन किया भगवान के चरणों में, कार्पण्य दोषो पात स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेता यश्रेयस्यान्विष्टं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम् साधि माम त्वाम प्रपन्नम्। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं तो धर्म से ही पागल हो गया। कई बार धर्म से भी आदमी पागल हो जाता है, जो धर्म भी पागल कर देता है तो अधर्म कितना ज्यादा पागल करता होगा। तो कृष्ण को गुरु बनाया, जब कृष्ण ने समाधान किया तो बाद में हमको कोई दूसरा गुरु बनाना नहीं पड़ा। इसलिए कई बार हम ड्राइविंग सीखते हैं तो ड्राइवर को भी कहते वाह उस्ताद, वाह गुरु, क्या कट मारा आपने, तो उसको भी गुरु बोल देते हैं। लेकिन वो गुरु इस संसार से संबंधित गुरु हैं, संसार से निकलने की सामर्थ्य नहीं रखते क्योंकि वो खुद डूबे हुए। इसलिए हमें ऐसे गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए जो गुरु भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता हो, और जो संसार में अपने मन का प्रतिनिधित्व करता है, संसार में अन्य चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे गुरु का थोड़ी देर के पालन करना ठीक है, बाकी चलते राम। ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने, हैव ए क्लैप फॉर हिम फॉर नाइस क्वेश्चन एंड हैव ए क्लैप फॉर नाइस आंसर आल्सो। अरे आंसर के लिए तो मैंने उनको जिम्मेदारी दी थी, जैसे हमारे लिए भी ताली बजनी चाहिए। प्रभुपाद आप सबके ऊपर कृपा करें, विष्णु कृपा करें। और कोई प्रश्न है किसी का? यस प्लीज। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मेरे पिताजी भी रामायण खोल के मेरे को यही दिखाते थे। वो रोज रामायण पढ़ते थे और मेरे को ऐसा दिखाते थे। तब मैं उनको उसमें से दशरथ जी का चरित्र दिखाने लग गया खोल के कि माता पिता देखो दशरथ जैसे होने चाहिए। दशरथ जी ने जब विश्वामित्र मुनि ने मांगा दशरथ जी से कि आप मेरे को राम दे दो, तो दशरथ जी ने बोला देव ले जाओ, चाहे मैं मर जाऊंगा प्राण छूट जाएंगे चलेगा, लेकिन गुरु वैष्णवों को निराश नहीं करना चाहिए, आप मेरे पुत्र को ले जाओ। तब हमें उन्हें दिखाना चाहिए कि हमें महाराज दशरथ जैसा पिता होना चाहिए, और उसमें से ये भी दिखाना चाहिए कि माता सुमित्रा जैसी माता होनी चाहिए, जिसमें कि नए नए लक्ष्मण जी विवाह करके आए थे और लक्ष्मण जी गए माता से पूछने के लिए, क्योंकि भगवान ने कहा था भैया वनवास तो मेरे को मिला है, तुम्हें तो मिला नहीं है, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो अपनी माँ से पूछ के आ जाओ। तो माँ के पास गए, तो सुमित्रा माता के पास गए। तो सुमित्रा माता, उनको डर लग रहा था कि अभी अभी शादी नई नई आई है, तो नई बहू को छोड़ करके एक दो दिन के लिए नहीं 14 साल के लिए जाना कोई छोटी बात है कि वो भी जंगल में जाना, ये तो बहुत दुर्लभ काम है। तो उनको बड़ा डर लग रहा था, बहुत डर डर के जा रहे थे माँ के पास। तो माता सुमित्रा को कहा, माँ बोले हाँ बेटा बहुत, मैं भैया राम के साथ, बोल बोल बोल, मैं जाना चाहता हूँ, आज्ञा चाहता हूँ। इसमें पूछने वाली क्या बात है बेवकूफ, जा जल्दी जा फटाफट। बोले पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। अरे पुत्रवती तो वही है जिसका पुत्र भगवान राम का भक्त है, अगर भक्त नहीं है तो बोले फिर वो शूकरी के समान है, इसलिए पुत्र तुमने पूछ के मुझे लज्जित किया, तुमने पूछ के लज्जित किया, पूछना ही नहीं चाहिए था। पुत्रवती तो वही है जिसकी संतान भगवान राम की भक्त, अन्यथा वो शूकरी है, और शूकरी की संतान क्या कहलाएगी, सुअर। इसलिए जो संतान भक्त नहीं है ना वो लोग कैसे हैं रामायण के अनुसार, और जो माता पिता अपनी संतान को भक्त नहीं बनाते वो कैसे हैं, सुअर। और जो नहीं बनने देते वो कैसे हैं, जंगली सुअर से भी गए गुजरे, मल खाने वाले सुअर जो भक्ति में विरोध करते हैं। इसलिए उनको ये वाले डायलॉग निकल देने का दिखा दूंगे, वेरी सिंपल। आगे से वो कभी रामायण खोल के नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनको रिगार्ड करते हुए रेस्पेक्ट देते, उनको भी हमारा उद्देश्य है, उनको भी हमने भक्त बनाना है। बहसबाजी नहीं करनी, उनका गौरव बढ़ाना है पहले, पहले स्वयं भक्त बनना है। स्वयं भक्त बन जाएंगे तो माता पिता का गौरव बढ़ गया, माता पिता बाई डिफॉल्ट भक्त को जन्म देने वाले बन गए। जब उनका गौरव बढ़ेगा तो फिर वो लोग एक दिन भक्ति को जरूर समझ। मेरे पिताजी मेरी भक्ति में शुरुआत में विरोध करते थे और बाद में वो मेरी हर बात को मानते थे। वो प्रतिदिन 25 माला जप करते थे और आखिर में उनकी बहुत अंदर से इच्छा थी, बाद में किडनी के पेशेंट बने और उन्होंने करीब 40 लाख भगवान की सेवा के लिए दिया। तो कहा कैसे मंदिर की सेवा में लगा देना, तो सब भगवान की सेवा में हमने लगाया। तो पहले मैं कभी घर से अगर ये सोच के कि घर पे खेती होती है देसी दाल मिलेगी बढ़िया दाल मिलेगी, तो मैं 10 किलो दाल भी लाता था तो उसके भी पैसे मांगते थे वो मुझसे, और मैं पैसा दे के दाल खरीदता। कई बार घर से मेरे को शुद्ध घी मिलता था क्योंकि घर में गाय वगैरह रखते थे, तो अगर 1 kg घी खरीदता था तो उसका भी मैं पैसा पे करता, कभी घी भी फ्री में नहीं देता। कोर संसारी थे, लेकिन बाद में उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया क्योंकि हमने काफी कुछ सहन किया। माता पिता के साथ डीलिंग थोड़ी सी सहनशीलता के आधार पर, उनको रिगार्ड देते हुए, उनके साथ बहस न करके उनके साथ मुस्कुराते हुए व्यवहार करना सीखना चाहिए। जो बात गलत कहें बहस नहीं करनी चाहिए, ठीक है आपको उतना समझ नहीं है, क्या कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना करें, लेकिन हम आपको समझाने का अधिकार भी नहीं रखते क्योंकि हम छोटे हैं, लेकिन भगवान आपके कृपा करें आप एक दिन समझेंगे। और कोई वो सही आज्ञा दें उसको होल हार्टेडली पालन करने की चेष्टा, उससे उनको लगेगा ये एरोगेंट नहीं है, ये हमसे ज्यादा कहीं ना कहीं बुद्धि रखता, अच्छी बातों को बड़े हृदय से मानता है, गलत बातों को इग्नोर नहीं करता, बहस नहीं करता, हंस के टाल देता, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। वैसे हंसने से तो सब लोग वश में आई जाते हैं इसलिए भक्तों को हंसते रहते। थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का?